कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे ऋण पिखायति हीना। कृपा बिंदु दिया कोरोई गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पिखायति हीना। सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृहहीना। सकले सम्मान करिते शकति देहो नाथ यथा यथा। तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हबे हत। कबे न कृपा लभिया ए जान कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धि न आमि अति दीन करो मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुमार करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखी बोया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋण पिखायति हीना। हरे कृष्ण। मैं माफी चाहूंगा, कल बहुत सारा सिद्धांत के ऊपर चर्चा हो गया और निश्चित रूप से थोड़ा समझने में तकलीफ हुआ होगा, पर सिद्धांत समझना, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाएगी और हमारी जो भावना है वो जब ज्ञान पर आधारित है या परम सत्य पर आधारित है तब हम भक्ति में टिक पाएंगे आजीवन। तो ये बहुत जरूरी है। तो कल हमने चर्चा किया कि किस तरह से हमारा ये जो संप्रदाय है, कोई भी चतुष्ट संप्रदाय क्यों ना हो, हर एक संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संपूर्ण ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तत्वतः इन भगवान के ज्ञान को जानना, भक्ति तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, प्रांत सब शिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। महाप्रभु ने रूप सनातन इन दोनों भाइयों को, एक को 2 महीने, दूसरे को 10 दिन लगातार प्रशिक्षण किया। ये संपूर्ण ज्ञान के जो भंडार है उसे बहुत ही सरल तरीके से, सार क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, प्रमुख रूप से 3, संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। भगवान से साथ हमारा शाश्वत संबंध क्या है, उसे जागृत करने का तरीका क्या है, अभिधेय ज्ञान, और जागृत करने से लाभ क्या होगा, प्रयोजन ज्ञान। मुख्य रूप से 3 है और ये चीज बहुत सुंदर से परंपरागत हमें ये प्राप्त हुआ है। अभी हमने ये भजन जो पढ़ा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित, इसमें शिला सरस्वती ठाकुर कृष्ण से लेकर अभी तक ये ज्ञान किस तरह से हमें मिला है, ये परंपरा जो है बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं। संस्कृत में भी उसकी रचना की है और बड़े सरल बंगाली में भी उसकी रचना की है। भक्त श्रीमान चैतन्य भागवत में कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर एक सुंदर श्लोक कहते हैं कि जैसे भगवान की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अच्छी तरह से मनाना, इसी तरह से वैष्णव तिथि जो है, आविर्भाव तिरोभाव तिथि उनकी, उसको भी मनाना बहुत ही पवित्र है और हमारे लिए लाभदायक है। क्यों और किस तरह से मनाना चाहिए, पूरा दिन उपवास, रात भर जागरण और एक बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। तो भले उपवास करे, रात भर जागरण ना करे, मुख्य चीज ये है उस दिन स्मरण ज्यादा होना चाहिए और एक उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव क्यों मनाते हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा किया, हर एक देश के कुछ नेता हैं, उनके जन्मदिन को भी हम मनाते हैं। उद्देश्य क्या है, किस तरह से उन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, अपना प्राण त्याग दिए। स्वाभाविक है कि 2 पीढ़ी बाद लोग भूल जाएंगे, तो उन्हें याद दिलाने के लिए कि आज जो आप स्वतंत्रता अनुभव कर रहे हो, इसके पीछे कितने लोगों ने अपना जान दिया है जिसके द्वारा आज आप स्वतंत्र हो। पहले परतंत्र थे हम, 800 साल मुगल साम्राज्य और 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य, 1000 साल की परतंत्र के बाद स्वतंत्रता मिली है और इसके पीछे जो जो भी कोई भी संग्राम किए उन सबको हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रेरणा लेते हैं और समझ पाते हैं कि आज जो हम आनंद ले रहे हैं स्वतंत्रता का, इसको हम फिर से ना खोए। इस यही उद्देश्य है इन दिवस को कैलेंडर में डालने का। तो अगर 1000 साल के पारतंत्र के बाद अगर स्वतंत्र मिलता है तो इतना बड़ा उत्सव होता है, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो व्यक्ति ने अपना संपूर्ण पूरे परंपरा में इतने सारे आचार्य जिन्होंने इतने सारे बाधाएं सहन किए अपने जीवन में, संग्राम किया अलग अलग वादों के प्रति, और हमें 3 गुणों से स्वतंत्रता पाने की, भौतिक चेतना से स्वतंत्रता पाने की, भाव सागर को पार करने की जो ज्ञान हमें दिया है, उनका जो जन्म दिवस या तिरुभाव दिवस है, आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस, उसको कितना उत्सव से मनाना चाहिए, कितना कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। तब हमारे हृदय में उनकी दी हुई जो मूल्यवान वस्तु है उसको हम समझ पाएंगे, नहीं तो शायद उस हीरे को, स्वतंत्रता का जो हीरा है उसको कांच का टुकड़ा समझकर शायद हम खो भी बैठे। तो ये महत्व क्या है, ये ज्ञान, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, सबसे बड़ा स्वतंत्रता, तो क्यों नहीं कि इसको अच्छे तरह से हम मनाएं। तो ये जो परंपरा हमने पढ़ा, ये परंपरा में यही आया है, इसकी शुद्धता को सुरक्षित रखकर इसमें कोई भी अपसिद्धांत आए नहीं, इस तरह से सुरक्षित रखकर इतने सारे लोगों ने हमें प्रयास कर हमें आज प्रस्तुत किया है, तो इसका मूल्य हमें समझना चाहिए। तो ये शिक्षा है कृष्ण से दी हुई और इस तरह से परंपरागत चली आई हुई शिक्षा। और कल हमने चर्चा किया कि शिक्षा का एक अंग है दीक्षा। जो शिक्षा की सबसे बड़ी जवाबदारी हमारे जीवन में लेता है वो दीक्षा गुरु कहलाता है। पर ये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम चर्चा करेंगे, प्रगति हो रहा है कि नहीं दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद भी, कब तक, अंतिम सांस तक, ये जरूरी है हमें। ऐसा नहीं कि अभी हो गया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, शुद्ध भक्त हो गए या दीक्षा हो गया या ब्राह्मण हो गए सन्यासी हो गए, नहीं, ये सब एक एक स्तर है, अलग अलग, पर इससे परे। तो कल हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा की है, तो ये शिक्षा गुरु जो हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर क्या है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिद्धांतिक रूप से एक ही है वो, कोई अंतर नहीं है, सब भगवान के ही स्वरूप हैं और उतना ही पूजनीय है, केवल व्यावहारिक रूप से अंतर होता है। तो दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है हमेशा, पर शिक्षा गुरु जो हैं उनका कोई इतना ही होना है ऐसा नहीं, कि असंख्य हो सकते हैं, अलग अलग स्तर से ये शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे कल हमने चर्चा किया, सबसे महत्वपूर्ण है चैत्य गुरु, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, वो ज्ञान देते हैं अंदर से, कन्फर्मेशन वो देते हैं कि बाहर जो सुन रहे वो सही है कि नहीं, तेरे लिए योग्य है कि नहीं। जैसी हमारी इच्छा है वैसे साधन जोड़ते हैं भगवान हमारे जीवन में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठे हुए हैं और हमारी इच्छा को देख रहे हैं, ये हमारे चैत्य गुरु हैं। पर चैत्य गुरु के साथ संपर्क करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आवाज हम सुनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो हम पहचान नहीं पाते कौन सा गुरु चैत्य गुरु का है, कौन सा गुरु शत्रुओं का है, छह शत्रु जो हमारे हृदय में बैठे हुए। इसीलिए वही चैत्य गुरु दो रूप में आते हैं, भक्त श्रेष्ठ और परमात्मा, परमात्मा एक अंदर और भक्त श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भक्त एक। तो ये हो गए चैत्य गुरु। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तं येन मां प्रयान्ति ते। तो जब आप देखते हैं हम प्रामाणिकता से हम आश्रय लेकर प्रगति कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के परिपूर्णता के लिए, तो अंदर से वो बुद्धि भी देते हैं। दूसरा है आदि गुरु। आदि गुरु मतलब हरेक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, संस्थापक नहीं मूल आचार्य, जिन्होंने परंपरा को स्थापित की। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार, बाद में मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, हरेक संप्रदाय में प्रमुख आचार्य, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु, हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं, षड गोस्वामी हमारे प्रमुख, इसीलिए हम उनके भी चित्र हम डालते हैं, प्रमुख शिक्षा गुरु है हमारे आचार्य रूपानुग। तो ये हो गया आदि गुरु। फिर संस्थापक आचार्य, जब काल के प्रभाव से या संदेश बदल जाती है या नष्ट हो जाती है या किसी कारणवश बाहरी रूप से रह जाता है, अंदर से उसका सार चला जाता है, नियम आग्रह, तब फिर से जागृत करने के लिए उस परंपरा के सार ज्ञान को और देश काल पात्र के अनुसार उसको प्रस्तुत करने के लिए ये ज्ञान जो देते हैं, फिर से उसको जागृत करते हैं, वो संस्थापक आचार्य, और एक दिशा प्रदान करते हैं वो संस्थापक आचार्य। और संस्थापक आचार्य का एक खास स्थान है शिक्षा गुरु, और संस्थापक आचार्य के अनुयायी जो हैं वो सबसे प्रमुख जो हैं हमारे लिए वैदिक ज्ञान, मतलब सबसे पहले संस्थापक आचार्य की पुस्तक, उसके बाद दूसरे शास्त्र, क्योंकि उन्होंने सारे परंपरा के, क्योंकि शास्त्र में अलग अलग श्लोक हैं, डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, सब प्रकार के लोगों के लिए कुछ कुछ है, उसमें से सार निकालकर, आमनाय कहते हो, सार निकालकर, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करौ। षड गोस्वामी अष्टक में कहा गया नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ। आप भक्तिरसामर सिंधु में पढ़ेंगे, उसमें से गिने चुने श्लोक सारे शास्त्रों से, खास करके भागवतम से, उसमें से निकालकर, निचोड़ निकालकर, जैसे कटहल खाते हैं, कटहल में से बहुत सारा वो बाहर का ये भी होता है, वो सब हटाकर, उसमें से बीज भी हटाकर, एकदम उसका जो मेन खाने योग्य चीज है वो लेकर, उसके ऊपर थोड़ा मद और उसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के पाउडर थोड़ा डालकर, तात्पर्य उसके इतने मधुर होते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। तो खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो आश्रय लिए हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से, अधिकृत, स्पष्ट और सरल, ये खासियत है प्रभुपाद जी के पुस्तकों की। शंका नहीं आता उसमें, क्लियर, बहुत ही अधिकृत है, बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही सरल है। तो वो प्रमुख हमारे शिक्षा गुरु हैं और उसके बाद जो भी आचार्य आएंगे उस उनके अंतर्गत उनको प्रमुखता लेकर उनके आदर करेंगे। फिर दीक्षा गुरु जिन्होंने पूर्ण रूप से शिष्य की जिम्मेदारी ली है मुक्त होने तक, भगवत धाम जाने तक, चक्षुदान दिलो ही जन्मे जन्मे प्रभु से, वो भी दो प्रकार के होते हैं, मुक्तात्मा और बद्ध जीव, दो प्रकार के होते हैं। मुक्तात्मा मतलब शाश्वत नित्य पार्षद, और भी कोई हो सकता है जो प्रगति करके साधना सिद्ध, ऐसा व्यक्ति साधना से उत्तम अधिकारी उद्यम, अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं वो, पर वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो एक दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु जो बड़ी जिम्मेदारी, अलग अलग स्तर की जिम्मेदारी, कुछ समय के लिए या कुछ खास चीज के लिए, कभी कभी ऐसा होता है जैसा मैंने कल बताया, कुछ लोग आते हैं एक सुंदर क्लास देके जाते हैं, प्रेरणा देके जाते हैं, हमें उत्साह देके जाते हैं, शिक्षा देके जाते हैं। दूसरे लोग कुछ समय तक एक या दो साल के लिए रहकर कुछ करते हैं, कुछ लोग किस एक चीज के लिए, मैरिज काउंसलिंग इनके पास जाओ अच्छे तरह समझाएंगे तुम, इसके लिए इनके पास जाओ खास, एक खास चीज के लिए। यहां कुछ लोग काफी हद तक जिम्मेदारी लेते हैं अपने जीवन में, जैसे काउंसलर सिस्टम जो है ये भी एक प्रकार का शिक्षा, वो चर्चा करेंगे हम। उसके बाद वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो हमें सबसे पहले मार्ग दिखाया, हो सकता है वो खुद मार्ग में नहीं है। हमारे मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त है, एक व्यक्ति है, वो हमेशा एक पार्क में जॉगिंग के लिए जाते थे सुबह सुबह, और जॉगिंग करते वक्त जो भी उनके साथ मिलता था उन लोगों को मंदिर भेजते थे। आज तक काफी लोग उनके द्वारा प्रेरित होकर मंदिर आकर, उनमें से एक तो ब्रह्मचारी भी बन गया और काफी लोग अच्छे तरह से भक्ति कर रहे हैं, और वो प्रभु जी आज भी जॉगिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं, क्लियरली बोलते हैं, मेरे को मत देखो, हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, साफ साफ बोलते हैं। मेरे से मत पूछो तू क्यों नहीं कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूं सुनो, अच्छी बात है जाओ उधर। हो सकते हैं कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के शिक्षा गुरु भी होते हैं, जो अभक्त हैं वो भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं। अब बोलूंगा अभक्त कैसा शिक्षा गुरु हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ चीज सिखाने के लिए हम उनसे मदद लेते हैं, जिसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो भी गुरु हैं, उनके प्रति भी हमारा ऋण होना चाहिए। एक प्रकार का सदाचार है जो सद्गुणों से संपन्न है, कृतज्ञ रहता है, जहां से भी उसको कुछ चीज मिला जो भगवान की सेवा में लगाने मिला है उसको भी हम सम्मान देते हैं। सब प्रकार के लोग इसमें आते हैं, भले अभक्त क्यों ना हो, माता पिता उनके प्रति हमारा ऋण है, कृतज्ञता है, रिश्तेदार हुए, जो भी। यहां हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए एक व्यक्ति आया, सिखा के गया हमको, कोई हमको कीर्तन करना है तो हारमोनियम सिखा के गया। एक चातुर्य, या चातुर्य नहीं, अनुभवी व्यक्ति होना, मैच्योरिटी चाहिए, किस तरह से सम्मान करना, उनका अनुकरण करने की जरूरत नहीं पर सम्मान देना, अलग तरीके का सम्मान होता है, पर जिस चीज से भी हमने कुछ लिया है उसके प्रति ऋण, कृतज्ञता और सम्मान। मैंने एक बार अपने राधानाथ स्वामी महाराज के कमरे में मैं बैठा हुआ था, तो वो हारमोनियम एक भक्त थे हमारे, एक डिवोटी प्रभु जी, जपा वपा नहीं करते थे पर बहुत अच्छे सिखाते वो, और हमेशा 24 घंटे हरि नाम लेते रहते, माला पर नहीं करते पर 24 घंटे कीर्तनीय सदा हरि। 2000 से ज्यादा ट्यून उन्होंने निर्माण किया और सिखाते थे सबको, तो महाराज को भी सिखाते थे। उम्र में महाराज से 5-6 साल बड़े हैं, तो वो आए कमरे में आए और महाराज बैठे हुए थे नीचे चटाई पर, और वो आए, उनको थोड़ा पीठ का प्रॉब्लम है, तो महाराज ने उनको एक कुर्सी लाने को बोला, कुर्सी पे बैठा है बगल में, कुर्सी पे बैठे हैं, महाराज नीचे बैठे, उनको थोड़ा हिचकिचा रहे थे, बोले नहीं नहीं बैठो बैठो आराम से बैठिए। और महाराज ने ऐसा ऐसा एक एक्शन किया कि आपके चरणों का धूल, बैठे, फिर महाराज हारमोनियम लिए, वो सिखाने लगे, हाँ ऐसा करेक्ट, हाँ गा रहे हैं, महाराज भी गा रहे हैं। आधा घंटा चला, आधा घंटा के बाद हारमोनियम बंद, और दोनों मैत्री भाव से बातचीत कर रहे हैं, हवा पानी कैसे चलता है, आपका लड़का कैसा है, हाँ ठीक ठाक है ना, कुछ पत्र उत्र आया क्या, कैसी है माता जी, कैसी है, ठीक है सब बहुत अच्छा है। और जाते वक्त वो महाराज के चरण पड़े और महाराज ने सर उनको पकड़ कर हरि बोल हरि बोल। तो 1.25 घंटे में मैंने 3 रिश्ता देखा, पहले वो गुरु थे और महाराज जी शिष्य थे सीखने के लिए, उस समय उन्होंने प्रणाम किया और उस समय उनके बाल पे हाथ रखकर खुजलाए नहीं, प्रेम से सुने और सीखे, सीखने के बाद मैत्री, और उसके बाद जाते वक्त वो सन्यासी है और वो गृहस्थ है, वो तो प्रणाम किए, महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, चले गए। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। मैं सोच रहा था कभी कभी, क्योंकि हम भक्त बन गए, हमको लगता है कि हम पूरे दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हम हैं, हमारा सिद्धांत श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ नहीं है अभी, वो भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है और हम सिद्धांत समझ गए हैं बुद्धि से कम आधा थोड़ा बहुत, इसीलिए हमको लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हो गए, और सबको हम लोग बड़े हीन दृष्टि से व्यवहार करते हैं, ये क्या क्या टीचर क्या सिखाया है, माता पिता कितने माता पिता हो गए, 84 लाख योनियों में हमारे, ये हमको क्या सिखाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार की भावना आ जाती है और फैनेटिक एक प्रकार का व्यवहार हमारा हो जाता है, और बहुत ही और इस ऐसा सदाचार न होने के कारण लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलती, बोले एक जब से हरे कृष्ण में आया देखो कैसा करता है। तो हो सकता है ऐसे शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमन पशु भी हमारे गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु, कुत्ते से हमको सीखना है कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए, लात मारेगा भी तो फिर से पूंछ हिलाते वहीं आएगा, कैसा निष्ठावान होना चाहिए, कुत्ता हमारा शिक्षा गुरु है। मृत चीज भी हमारी शिक्षा गुरु बन सकती, पृथ्वी हमारी शिक्षा गुरु है, समुद्र हमारा शिक्षा गुरु है, मनुष्य शरीर हमारा शिक्षा गुरु है, काफी चीज सिखाता है हमें। 11वें स्कंद में वो ब्राह्मण जिसको प्रहलाद महाराज मिलते हैं, अवधूत ब्राह्मण, 24 गुरु बताता है, उसमें से एक थे पिंगला, एक वेश्या, वो भी मुझे कुछ सिखाई, पर ये चीजें सीखने के लिए थोड़ी आध्यात्मिक तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, सीखते सीखते उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका फोटो ऑल्टर में नहीं रखना, पर उनसे सीखना, किस तरह से सीखना उसके लिए भी बुद्धिमानी बुद्धिमता होनी चाहिए, शास्त्र शास्त्रीय तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु से ज्ञान लेना थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, ये तो उल्टा ज्ञान ले सकते हैं हम लोग, पर ये जो है दूसरे स्तर के अभक्त, ये मनुष्य क्यों ना हो या पशु क्यों ना हो या निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, वो भी हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। मतलब देखिए, जहां से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान की ओर बढ़े, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, और वो सब कृष्ण के ही स्वरूप हैं, उतना ही पूजनीय है, उतना ही आदरणीय है। पर ये बुद्धिमता होनी चाहिए, दो चीज, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, आध्यात्मिक संवेदनशीलता, किस तरह से उनको सम्मान देना, और थियस्टिक इंटेलिजेंस, धार्मिक बुद्धि, इनको किस तरह से सम्मान देना चाहिए, कितना तक अनुसरण करना चाहिए, कितना उनसे लेना चाहिए, किस तरह से सम्मान देना चाहिए, कृतज्ञता किस तरह से प्रकट करना चाहिए, यह सब अनुभवी व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए सब। नहीं तो हम हो सकता है अपराध कर बैठे। अगर ये सारों का जो सिर्फ एक ही को प्रामुख्यता देकर और सबको अगर हम न कम कर देते हैं, हो सकता है हम अपराध कर बैठेंगे। तो कभी कभी हमको लगता है गुरु मतलब दीक्षा गुरु, और सब जो है उनकी हम अवहेलना करते हैं या सही तरह से सम्मान नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए समस्या आ सकती है। तो ये बहुत हो सकते हैं या एक ही हो सकते हैं। और दूसरा, दीक्षा गुरु जो हैं संबंध ज्ञान सिखाते हैं हमें, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो ज्ञान देते हैं, और जो शिक्षा गुरु हैं वो हमें अभिधेय ज्ञान में मदद करते हैं अलग अलग स्तर से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भगवान के साथ हमारा संबंध एक जोड़ता है, और दूसरा जो है अभिधेय, उस संबंध को पोषण करता है और उस संबंध को और बढ़ाने में मदद करता है। अभिधेय मतलब आगे बढ़ना। तो दीक्षा गुरु जो है संबंध गुरु के प्रतिनिधि है। संबंध गुरु है सनातन गोस्वामी, मदन मोहन हमारे संबंध देव हैं, उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। और अभिधेय गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो रूप गोस्वामी के प्रतिनिधि या गोविंद देव की कृपा से उनका स्वरूप मिलता है। ऑफकोर्स दोनों एक ही है एक रूप से, पर इस तरह से सूक्ष्म अंतर है। और शिक्षा गुरु जो हैं उनका जो जिम्मेदारी जवाबदारी है वो थोड़ा अलग स्तर तक होता है, कुछ कम स्तर तक होता है, कुछ हद तक होता है, जबकि दीक्षा गुरु जो लेते हैं वो पूर्ण रूप से उनको उद्धार करने तक। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत गंभीर चीज है, बार बार उनको नीचे आने को ये मत करो। हम अगर नहीं करते, एक बार दीक्षा लेने के बाद फिर से अगर उसको अच्छी तरह से पालन नहीं करते, एक बार प्रभुपाल ने ऐसा कहा, ही हैज टू कम बैक, आना पड़ेगा मुझे बार बार जब तक ये जाता नहीं वापस। प्रहलाद महाराज भी यही भाव से नरसिंहदेव को कहते हैं, जब तक एक मूर्ख भी यहां है संसार में तब तक मैं अपने गुरु की सेवा, नारद मुनि की सेवा में कैसे छोड़ सकता हूं, मैं यही रहूंगा और सबको भेजने के बाद मैं आऊंगा। ये भावना गुरु की होती है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं क्रिश्चियन में, जीसस क्राइस्ट ने हमारे पाप को लेकर सूली पर चढ़ गया, ऐसा कहते क्रिश्चियन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको बार बार सूली पे मत चढ़ाओ तुम्हारे पाप के लिए, फिर से पाप पाप कर करके उनको चढ़ाते रहो, तुम पाप करते रहो, ऐसा मत करो, कुंजर शौसवत, फिर से मत करो। तो प्रायश्चित और तपस्या का महत्व, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो है तो एक्चुअली संबंध शुरू हो गया है। और अगर दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम देखते हैं कि नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, माला ठीक से नहीं हो रहा है, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, तो नाम के वास्ते हो गया हो। अगर नहीं भी हुई है पर अगर ये संबंध रखा है हमने, वाणी से संबंध रखा है, तो एक्चुअली वो संबंध और भी महत्वपूर्ण है। कितने लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया? काफी लोग निष्क्रिय हो गए, काफी लोग प्रगति कर रहे हैं, काफी लोग दूसरों को मदद कर रहे हैं, जवाबदारी ले रहे हैं। ये हमेशा रहेगा, ये स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। तो जिस हद तक वो प्रायश्चित है, जिस हद तक वो तपस्या है, कृतज्ञता है, जिस हद तक वो महत्व जानेंगे हम, तो उस हद तक हम उसको गंभीरता से लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे ठीक से। ये हो गया। और शिक्षा गुरु जो हैं, वो किसी स्तर किसी समय पे आते हैं हमारे जीवन में। शुरुआत में आएंगे वर्तम प्रदर्शक गुरु के रूप में, या कोई शिक्षा गुरु के रूप में, अलग अलग स्तर में। जब संकट में है तो कोई मदद करके चला जाता है, हो सकता है ऐसे। जैसे जड़ भरत महाराज रहुगुण से एक बार मिले, दे दिए फिर चले गए, ऐसा नहीं कि बैठ के दीक्षा दिया, नहीं, शिक्षा दी और चले गए वहां से। उसके बाद वर्णन नहीं है क्या हुआ, बोले और चले गए। और दीक्षा गुरु जो है, साधारणतः प्रथम गुरु होते जो शिक्षा देते हैं, पर इस्कॉन में थोड़ा ये अलग है भी। इस्कॉन में कैसा होता है, पहले एक वर्तम प्रदर्शक गुरु हमें संस्था से जोड़ते हैं, तो किसी ना किसी तरह से हम, कोई ना कोई लाया हमको, कोई संडे फिश के लिए मैं आमंत्रित किया, कोई हमको पकड़ के लाया, हमारा दोस्त हो कोई, कभी कभी माता पिता को बच्चे ले आते हैं, कभी बच्चों को माता पिता ले आते हैं, कभी शिक्षक को बच्चे ले आते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी। हमारे मंदिर में काफी विद्यार्थी हैं जो अपने सारे टीचर को, सबको भक्त बना दिए। मेडिकल स्टूडेंट थे वो, जितने सारे प्रोफेसर थे धीरे धीरे सबको लाए हो, ऐसे भी लोग हैं। तो कोई ना कोई वर्तम प्रदर्शक गुरु के रूप में, फिर हम यहां आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्लास में आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, वो सब शिक्षा, धीरे 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 शिक्षा हो रहा है। फिर हमें समझ में आता है, सबसे पहले कृष्ण कौन है ये समझना चाहिए। फिर मंदिर में एक योजना बनाई जाती है, ठीक है इसका आप इनके इनसे जुड़ जाओ, इन भक्तों के संपर्क में रहो, ये आपको मार्गदर्शन देंगे, सिस्टमैटिक है वो, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उसको एक सिस्टम बताया गया है, उसके द्वारा उनको समझ में आता है ओहो कृष्ण है। सबसे पहले कृष्ण को समझाओ, डायरेक्टली गुरु नहीं बताते। दुर्भाग्यवश कभी कभी हम देखते हैं जो कम अनुभव वाले या कनिष्ठ भक्त होते हैं, डायरेक्टली आते साथ उनको एक गुरु का फोटो दे देते, ये तुम्हारे गुरु जी है, तो अपराध करने की संभावना है। पहले पहले उनको बताओ भगवान कौन है। भगवान समझ में आ गया, अब भगवान को सबसे अच्छा जानने का तरीका है जब भगवान भक्त बन के आए, कृष्ण को जानना है, कृष्ण कौन है ये तो समझे सबसे पहले जानो। कृष्ण को समझ गए, अब कृष्ण को सबसे अच्छा जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो भगवान कृष्ण खुद शिक्षक के रूप में आए हैं सिखाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझाओ। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है तो एक व्यक्ति ने पूरे विश्व भर में इस संदेश को अच्छी तरह से प्रचार किया, वो हमारे संस्थापक आचार्य। वहां लाके छोड़ दो, वहां तक हमारा कर्तव्य है, छोड़ दो। दुर्भाग्यवश हम जबरदस्ती करके किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसके द्वारा हिंसा हो सकता है उसके श्रद्धा में, या अपराध हो सकता है, वो नहीं समझते। कभी कभी यहां एक कनिष्ठ थोड़ा ऐसे भक्तों के बीच उत्साह रहता है, गलती नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, उत्साह रहता है और कह देते हैं, और इस तरह से फिर उनको समझने दो, एक स्वाभाविक संबंध जुड़ने दो, सुनने दो। सुनने के बाद देखते हैं, जिसके देखते हैं समझते हैं, प्रेरणा मिलती है, एक संबंध जुड़ता है हृदय से, फिर प्रेरणा मिलती है और वो उनको छोड़ दो। वहां जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए ये चीजें, जबरदस्ती। दुर्भाग्यवश हमारे संस्था में, मैं पूरे विश्व संस्था में, कृपया ये मत समझिए कि मैं किसी एक व्यक्ति को कह रहा हूं, ये जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं जितना भी भ्रमण किया हूं पूरे जितना मेरा अनुभव है और मैंने सुना है भक्तों से, अनुभवी नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग उत्साह में थोपते हैं, हमारे गुरु के को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, इससे पहले कि उनको गुरु का महत्व क्या है, गुरु का ज्ञान क्या है, क्यों गुरु का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य जीवन एक नाव है और नाव के जो कर्णधार है वो गुरु हैं, वो जरूरी है। अच्छा, फिर गुरु के लक्षण क्या हैं? अच्छा, फिर उसके बाद लोगों को सुनो, देखो, समझो, उसके बाद वो निर्णय ले तो अच्छा है। तो कभी कभी जबरदस्ती करने के बाद, दीक्षा होने के बाद में भी, आज भी, इतने सालों के बाद भी उनको अपने गुरु के प्रति न निष्ठा है न श्रद्धा है और उल्टे सीधे कुछ कहते रहते हैं। तो इसके द्वारा हमारे उत्साह के चलते हम लोग अपराध कर सकते हैं। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, ये हृदय की बात है। भगवान के साथ जो संपर्क है, भगवान प्रेरणा देंगे अंदर से, चैत्य गुरु के रूप में हमें प्रेरणा देंगे, जैसे प्रेरणा मिलेगी वैसे करने देंगे। तो कभी कभी, जैसे मैंने कहा, कभी कभी जान के या अनजाने में मार्गदर्शन ठीक से न होने के कारण जबरदस्ती हो जाता है ऐसा। और एक भौतिक रूप से उसका मैं चर्चा करेंगे जब हम बाद आगे जाएंगे, तो उसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा, थोड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ताकि हमारा सम्मान सबके प्रति, क्योंकि अगर अपराध भाव रहेगा प्रगति नहीं है, कि अपराध जो है वो ब्रेक के समान है और श्रद्धा जो है एक्सेलेटर के समान, और वो श्रद्धा में अगर चोट आ गया किसी शिक्षा गुरु के प्रति तो प्रगति में मुश्किल होगा हमें, और हम सोचेंगे क्यों प्रगति नहीं हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, एक गुरु को सम्मान दे रहे हैं और सब दूसरे के प्रति हमारा गलत भावना हो गया है, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, मैच्योर तरीके से। वो दुर्भाग्यवश कभी कभी, जैसे मैंने कल बताया, संस्था में कनिष्ठ स्तर पर सम्मान केवल उनको दिया जाता है जिनको, जिनका तिलक है, कंठी माला है, किसी कारणवश शायद वो नहीं पहनता होगा, पर बाहरी रूप से हम लोग जज करते हैं। गदाधर पंडित ने इनको ऐसे ही जज किया, पुंडरीक विद्यानिधि को, अरे ये तो बड़ा विषयी व्यक्ति लगता है। हो सकता है हम भी कर सकते हैं इस तरह से, कर और दुर्भाग्यवश ऐसा व्यवहार रहता है, तुरंत एक लेबल चिपका देते हैं उसके उसके इसके ऊपर, क्या बोलते, माथे के ऊपर, ये ऐसा है, और वो बेचारा लेबल चिपकाने के बाद जहां भी जाता है तो ये है ना, अरे तुमको कैसे मालूम है, क्योंकि लिखा हुआ ऊपर, क्योंकि सबको बता दिया उसने ये ऐसा ही है, ये अभक्ति नहीं है, ये दिलक ही नहीं लगा, एक ठप्पा लग गया तो उसी तरह से हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हिंसा हो सकता है लोगों के जीवन में, तुरंत अगर हम ऐसा इस तरह से जज करने लगेंगे। तो और शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु हमें नाम मंत्र और ये ब्राह्मण दीक्षा, गायत्री मंत्र और नाम हरिनाम वो देते हैं, और शिक्षा गुरु जो है गायत्री मंत्र में न दे, पर दूसरा उपनयन सब, ये थोड़ा दूसरा, ये जो है गुरु के स्तर पर भी शिक्षा गुरु बहुत होते हैं जो गुरु वर्ग में हैं। कभी कभी दीक्षा गुरु शरीर छोड़ दिए तो हम किसी शिक्षा गुरु के आश्रय लेते हैं, संन्यास किसी और से लेते हैं तो वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। सर प्रभुपाद जी ने दीक्षा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लिया और जो संन्यास है वो हमके वरिष्ठ गुरु भाई से लिए, तो वो सर वो तो भी शिक्षा गुरु वर्ग के वो स्तर के भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जैसे हमारे संस्था में भी हम देखते हैं कई भक्ति तीर्थ महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, श्रीधर महाराज, तो ऐसे शरीर छोड़ते हैं। तो उस समय शिक्षा चालू होना चाहिए। तो किसी हम एक व्यक्ति का आश्रय ले सकते हैं जहां से शिक्षा चलते रहे, प्रगति चलते रहे। ये सब डिटेल है सदाचार का। सदाचार बहुत महत्वपूर्ण है। सदाचार नहीं हो तो ठीक तरीके से प्रगति नहीं कर पाएंगे, या फिर अपराध कर बैठकर वो उसमें भी प्रगति में बाधा हो सकता है। तो सदाचार के जो वैष्णव आचार, ये भी सीखना इसलिए बहुत थोड़ा जरूरी है। और हां, दीक्षा गुरु जो हैं, हम जो पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, माध्यम वही है। जनरली हम भगवान को जब पूजा आरती करते हैं तो अपने दीक्षा गुरु के फोटो, दीक्षा गुरु वो माध्यम है जिसके द्वारा, वो मुंह है जिसके द्वारा हम पेट में खाना डाल सकते हैं। तो वो तरीका सारा पूजा के लिए उन्हीं के द्वारा, हम पहले गुरु दीक्षा हुआ है तो दीक्षा गुरु, उसके बाद संस्थापक आचार्य, उसके बाद हम ऊपर जाते हैं इस तरह से। तो अभी तक जो मैंने कहा ये सब सिद्धांत के स्तर पर था। ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं अभी, जो मैं थोड़ा अभी इष्ट गोष्ठी समझ लीजिए इसको, अभी ये सेमिनार था। सेमिनार में मैंने गुरु का सिद्धांत, गुरु तत्व जो है वो मैंने चर्चा किया। अभी मैं थोड़ा एक फ्रॉम यूनिवर्सल आई कम टू लोकल, फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। अभी ग्लोबल स्तर पे मैंने बता दिया सिद्धांत क्या है, अभी लोकल स्तर पर आया हूं। इतना सब क्यों चर्चा किया हमने, ये सिर्फ ऐसा अच्छा मनोरंजन के लिए नहीं, बहुत गंभीर चीज है ये। अगर ये तत्व को समझ गए आप, गुरु तत्व को समझ गए, तो आध्यात्मिक जीवन में अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाधिम न तरेत स आत्महा। भागवत में श्लोक है ये, नृदेहम आद्यम, मनुष्य शरीर जो है सुलभम, हमने प्रयास नहीं किया, बाय चांस मिल गया, उठ के देखे कि शरीर है। हमने योजना बनाया था कि कोल्हापुर में आएंगे, इस व्यक्ति के गर्भ में जन्म लेंगे, हमने निर्णय नहीं किया था। सुलभम पर सुदुर्लभम, फिर से नहीं मिलने वाला, समय देखते देखते चला जा रहा है। तो सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम, प्लवम मतलब बहुत सुंदर नाव है ये, भव सागर को पार करने के लिए सबसे अच्छा नाव है मनुष्य जीवन। देव योनि भी अनुकूल नहीं है, वहां इतना भोग है कि मन विचलित हो जाता है। करोड़पति के बच्चे कभी भक्ति में आना मुश्किल है, धनी बाप का इकलौता बेटा मौज करने में लगा रहता है, एकदम गरीब है उसको खाना पीने की चिंता रहती है। जो मीडियम है ना वही लोग आते, आधा थप्पड़ भी खा रहा है आधा आशा भी है दुनिया में, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं क्योंकि दोनों देखे, वो सुख भी देखे दुख भी देखे। ये लोग कभी थप्पड़ नहीं खाए ऊपर वाले, ये लोग सिर्फ ही थप्पड़ ही खाते रहते, उनको एक है थप्पड़ बंद कैसे करना है, बस पापी पेट का सवाल, किसी तरह से दो पेट दो बार खाना मिले। तो एकदम जो निम्न स्तर पर है उनको आना बड़ा मुश्किल है, जो एक कदम करोड़पति है उसको क्या दुख देखा ही नहीं है कभी, बहुत समय के बाद बाई चांस एक थप्पड़ लगे तो बोलता किसने मारा, अच्छा सबको लगता है क्या। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उसको उनके पिता ने ऐसे वातावरण में रखा था कभी देखा ही नहीं था बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। अरे ये क्या है, ये सो के क्यों जा रहा है, चार लोग उसको क्यों उठा रहे, बोले मर गया। मर गया क्या होता है, वो मर गया मतलब राम नाम सत्य है, अच्छा और सब झूठ है। तब समझ में आया। तो ये स्तर के भी नहीं आते, इस स्तर के भी, इसीलिए स्वर्ग लोक वाले नहीं आते, नीचे वाले नहीं आते, इसीलिए भूमि ये जो हमारा बीच का स्तर है ना, सुख दुख शीतोष्ण सुख दुख एकदम बैलेंस है, इधर इतना बैलेंस है कि थप्पड़ पड़ते रहता है, प्रेम से रहने नहीं देते, और थोड़ा थोड़ा आश्वासन भी देते। तो ऐसी परिस्थिति में सुलभ है, सबसे अच्छा है, मनुष्य जीवन सबसे अनुकूल है और यही सबसे अनुकूल चीज है आत्म साक्षात्कार के लिए। सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, सबसे सुंदर नाव है ये। पर नाव है और चढ़ गए, चले गए समुद्र में, पर हमको मालूम नहीं है कि गाड़ी चलाना कैसे है अभी इसको सामने, और किस दिशा में जाना है, चारों ओर पानी पानी, कुछ दिखता नहीं। रात को तो पानी भी दिखता नहीं, सिर्फ आवाज आता है। आप कभी नाव लेके अंदर चले जाओ, समुद्र में चले जाना, आपको तैरना नहीं आता और नाव चलाना नहीं आता, क्या हालत होता है देखो। एक बार मैं चला गया था केरला में, अब शायद बताऊंगा आप बताया होगा, चले गए हम लोग, अच्छा लगा, वाह क्या आसमान, क्या पानी, क्या जमीन, क्या हवा। चले गए हम लोग दो लोग, दोनों को तैरना नहीं आता था उतना अच्छा, ठीक है स्विमिंग पूल में यहां से डूबा तो कोई उठा सकते, उतना ही तैरना। पौना दो घंटे, एक डेढ़ घंटे तक चले गए, और वो जो दो ये था डंडा उसको अंदर रख दिए, दोनों लेट गए बोट में फर्स्ट क्लास। डेढ़ घंटे के बाद दोनों उठे, पानी हवा सब अच्छा था। उसके बाद देखा अभी समुद्र क्या बोलते हैं ये सूरज डूबने लगा, तो बोले कि अभी चलो यार वापस जाते, चलो चलो चलो, फिर घुमाने लगे वापस। पर बाद में लगा किधर जा रहा है ये बोट, बाद में इधर उधर देखा, अरे वो तो ये दिखता ही नहीं है वहां आजू बाजू, न बिल्डिंग दिख रहा है न जमीन दिख रहा है, चारों ओर पानी, चारों ओर पानी, और घुमा रहे तो किस दिशा में जा रहे नहीं मालूम, अंदर जा रहे तो क्योंकि जब सो रहे थे कहां गोट घूम गया क्या मालूम, किस दिशा में अभी घर जा रहा है क्या मालूम। वही आसमान, वही पानी जिसका आनंद ले रहे थे, भयानक लगने लगा। बोला पानी पानी, हमारा अंतिम काल भी पानी में ही आएगा, वो हवा भी गरम गरम लगने लगा। तो ये स्थिति होती है जिस व्यक्ति को एक गुरु नहीं, सदगुरु ने नहीं मिले जीवन में, ऐसी परिस्थिति हमारी। तो हम सौभाग्यशाली हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। और गुरु मिलने का मतलब क्या, गुरु मिलने का मतलब एक कप्तान मिला हमारे, और उस समय एक नाव वाला आया और बोला चलो मेरे साथ सुरक्षित। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट आदमी है वो, पैदा होते ही नाव पूरे समुद्र में ही घूमता है वो, उसको मालूम है, ऊपर देखता है, आसमान देख के बता देता है, आठ घंटे में बारिश आएगा बोल दिया उसने, और आसमान में ऐसा तारा वारा भी नहीं, कैसा पता चला उसको, एक दिशा में जाता रहता आराम से। हम भी वही हैं, चश्मा भी है सब चुप दिख रहे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, चश्मा फर्स्ट क्लास, उसको मालूम है किस दिशा में जाना है। एक्सपर्ट दक्ष, तत्राति दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उन्हें परफेक्टली मालूम। ऐसा व्यक्ति मिल जाए कितना रिलीफ, वाह। नहीं तो हमारी परिस्थिति ऐसी है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कितने दूर गए हैं, पीछे जा रहे हैं कि सामने जा रहे हैं, क्या मालूम। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, और हवा जो है, पिछले जमाने मोटर बोट नहीं था, हवा चलती थी, उसको उसने वो कपड़े लगाकर सेल बनाते थे उसमें से, उनको मालूम था हवा जहां से भी आए उनको मालूम है किस दिशा में उसको मोड़ के सामने बढ़ना है, और उनको मालूम है किस दिशा में जाना है, जैसा वो क्या बोलते हैं कंपास है तो मालूम है उत्तर की दिशा क्या है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंदन, गुरु को मालूम है, और वो हमें, वो अगर हमारे नाव का कप्तान बन गए, कोई निश्चिंत हो जाता है आदमी। ये एक लक्षण है, सदगुरु मिले हैं कि नहीं इसका लक्षण क्या है, लक्षण यही है कितना आप निश्चिंत हो रहे हो, चिंता रहित हो रहे हो, संसार में रहकर भी संसार के नहीं, वो हम तुरंत चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे ये प्रैक्टिकल, आज की परिस्थिति में हमारे लिए ये सिद्धांत का क्या एप्लीकेशन है। तो दो चीज मैंने महत्वपूर्ण चीज कही, एक है ये भगवान से आया हुआ है शिक्षा, और वही शिक्षा हमको वापस ले जा सकता है। और ये परंपरा जो है ये शिक्षा की है। सबसे बड़ी परीक्षा है क्या हमको कंटिन्यू शिक्षा मिल रहा है क्या, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शिक्षा मिल रहा है क्या। और शिक्षा का एक अंग है, एक अंग है दीक्षा, और भी बहुत सारे चीज है। ये हो गया तो हो गया ऐसा नहीं है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं तीन प्रभुपाद जी के तीन पत्र पर संक्षिप्त रूप से मैं थोड़ा आपको आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है शिक्षा देने का, शिक्षा मतलब सजा नहीं, शिक्षा मतलब ज्ञान देना, शिक्षण, ये शिक्षा का जो तरीका है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जमाने में एक गुरु होता था गांव में, और गांव वाले सब उसको पहचानते थे, मार्गदर्शन लेते थे, बस पूछते थे क्या है, ठीक है, उसको मालूम था, ऐसा एक अपना फैमिली डॉक्टर होता है, जब हम मां के घर में थे तब से हमको जानता है, वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से जानता है, हमको क्या क्या बीमारी होता हमसे अच्छी तरह से जानता है वो, तो 2 साल में क्या हुआ था। पर अभी ये संस्था इतनी बड़ी हो गई है, और इस संस्था में कभी हम देखते हैं कि हजारों हजारों लोग बढ़ते जा रहे, लोग आ रहे हैं, और दीक्षा गुरु कम है, क्या क्या करेंगे, कितना कितना जिम्मेदारी लेंगे। कोई जाके कहेगा कि मेरी पत्नी के साथ आके झगड़ा हो गया, आज मेरा ठीक से माला नहीं हुआ, क्या करने का, क्या झगड़ा हुआ तुम्हारा, 2 घंटा भी लगेगा सुनने में, सुनोगे क्या, उसने ऐसा बोला, उसके बाद मैंने ऐसा बोला, उसके बाद ऐसा हुआ, हमारा 4 घंटा झगड़ा हुआ, कंप्राइज समरी में आपको 2 घंटे बताऊंगा। तो अगर सबका सुनते बैठे तो क्या करेंगे दीक्षा गुरु, उनका माला कब करेंगे और उनकी जो जिम्मेदारी क्या करेंगे। तो हमारी ये संस्था की, खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामनाथ प्रचार बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ में प्रचार के साथ साथ जब संख्या बढ़ती है तो साथ साथ में उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या, कि दीक्षा दे दिया पर शिक्षा क्या। तो इसीलिए दीक्षा जो गुरु होते हैं वो एक प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं कि इसके निर्देशन में तुम शिक्षा ग्रहण करो, तो उसको भी उतना ही प्रामुख्यता और प्राधान्यता देना जरूरी है। आप बोलोगे प्रभु जी वो तो उतने योग्य नहीं है, वो हो सकता है वो योग्य व्यक्ति नहीं है, पर हम यहां देखेंगे किस तरह से प्रभुपाद जी उस परिस्थिति को संभाले। तो ये करंदर नाम के भक्त हैं, उनको 3 दिसंबर 1971 में जब दिल्ली में थे करंदर प्रभु, शायद वो मंदिर के अध्यक्ष थे उधर, उस समय ये पत्र लिखे प्रभुपाद जी, उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दिया चिट्ठी के ऊपर या डायरेक्टली दिया पता नहीं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं उनको, बोले हैं अभी मैंने मतलब उनको दीक्षा दे दिया है, अभी तुम उन्हें अच्छे तरह से मार्गदर्शन दो कृष्ण भावना में, क्योंकि आप एक वरिष्ठ भक्त हो, वेटरन, वेटरन मतलब अनुभवी, मैच्योर, सीजन्ड। कौन से साल में लिख रहे हैं ये, 1971, कितने साल में शुरू किया, कौन से साल में शुरू किया प्रभुपाद जी ने, 66 में, और करंदर प्रभु तो बाद में आए होंगे क्योंकि लीलामृत में उनका वर्णन नहीं है, तो समझ लीजिए 67 या 68 में आए वो, हाँ, और अभी 71, मतलब कितने साल हो गया, 3 साल। आप में से कितने लोग 3 साल से इस संस्था से संपर्क में आए हैं, हाथ उठाइए। पिछले 3 साल से इस संस्था से जुड़े हुए कम से कम, या उससे पहले भी 3 साल से, मतलब 1-3 साल पहले आए ना, ऐसा नहीं, हाँ आपको तो 8 साल से मैं देख रहा हूं किसी लोगों को, तो आप समझे नहीं, 3 साल और उसके पहले जितने लोग आए हाथ उठाइए, मतलब ये चिट्ठी आपके लिए भी है। सोचिए आप कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने खड़ा किया, अरे हम लोगों को तो ज्यादा मालूम है उनसे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी अकेले थे, बस एक ही पिता थे, न मामा न काका न चाचा। अभी हमारे कितने मामा चाचा काका भरे पड़े हुए, बड़े भाई बड़ी बहन बहुत सारे हैं हमारे, इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली हो गया हमारा। रविंद्र स्वरूप प्रभु कह रहे थे, जब हम लोग सब कृष्ण भावना में, हम सब बच्चे थे, 17-18 साल के थे, और एक ही अडल्ट था हमारे, एक ही अनुभवी व्यक्ति थे, वो थे प्रभुपाद। बस कुछ नहीं मालूम उनको, 3 साल के अंदर जो प्रभुपाद ने सिखाए वही सीखे थे, और प्रभुपाद जी उनको लिख रहे हैं। अब जितने लोगों को अभी नए लोग आए हैं, उनको गाइड देम वेरी नाइसली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अच्छे तरह से उनको मार्गदर्शन देना कृष्ण भावना में। क्यों? क्योंकि यू आर ए वेटरन डिवोटी, तुम बड़े अनुभवी भक्त हो, सीजन्ड मैच्योर डिवोटी हो, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग द फ्यूचर ऑफ अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ माय ओल्डर डिसाइपल्स। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत संघ का जो भविष्य है, हमारे थोड़े बड़े जो भक्त हैं उनके ऊपर निर्भर है। अभी यानी मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं कभी भी चला जाऊंगा, तुम लोगों को मैंने दिया है, इसलिए मैंने पूरा जान जोखिम में डालकर इतना सब दिया है, कृपया इसको स्वीकार करो और बांटो। अच्छा, किस तरीके से उनका गाइड देम नाइसली बोला है, उनको गाइड करो किस तरह से, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान, बड़े ध्यान से सुनिए। गिव देम ऑल फैसिलिटी टू परफेक्ट देयर लाइव्स बाय प्रोटेक्टिंग देम एंड इंस्ट्रक्टिंग देम नाइसली, दैट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ माय सीनियर डिसाइपल्स। कह रहे हैं गिव देम ऑल फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब क्या, सुविधाएं, मेरे भक्तों को सारे सुविधाएं दो। सुविधाएं मतलब क्या, सबको अपना अपना घर बना के 4 बेडरूम एक फ्लैट और बाथरूम और अटैच ये भी देना, हो सकते तो वो भी दे दो बाबा। शारीरिक स्तर से, उसके बाद कहते कैसा सुविधाएं, अपनी जीवन को परिपूर्ण करने के लिए, यानी प्रेमा पुमार्थो महा धर्म सुनुष्ठित पुमसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादेत यदि रतिम श्रमये वही केवल, श्रम हो जाएगा अगर हम परिपूर्णता शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। तो शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम देने के लिए जो कुछ सुविधाएं जरूरी है वो सुविधाएं आप दो, ये आपकी जवाबदारी है। किस लिए, दो चीज के लिए सुविधाएं, बाय प्रोटेक्टिंग देम उनका संरक्षण, 3 प्रकार के संरक्षण, शारीरिक भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक कैसा संरक्षण कोई बता सकता है, यहां शारीरिक संरक्षण कैसा देते हैं हम लोग, इस संस्था कैसा देती है, वो तो आध्यात्मिक हो गया, ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान देना आध्यात्मिक हो, शारीरिक कैसा देते हम लोग, प्रसाद। आप आपको बोलेंगे 4 दिन लगातार प्रोग्राम है, प्रसाद नहीं है, कितने लोग आएंगे, आप सब लोग आएंगे, आप महान हो, मैं नहीं आऊंगा कम से कम। अनुकूल मतलब शरीर थोड़ा अनुकूल हो ना तो प्रेम से बैठ सकते, अगर पंखा ही नहीं है, शेल्टर ही नहीं है, मतलब शेड ही नहीं है, ऊपर कहां बैठेंगे, रंकाला के पास आ जाओ सब लोग। दूसरा वो कहीं टेलीफोन का खंबा है उसके पास आ जाओ सब लोग बैठेंगे, कौन सुनेगा, प्रेम से सुनने के लिए इधर गाड़ी चल रही है इधर चल रही है, प्रेम से बैठने के लिए एक जगह चाहिए। दूसरा जगह जाएंगे तो घंटी बजाएंगे, उठो मारा टाइम हो गया, ये करो ये आरती वो आरती सब चलता रहता है। तो कुछ हद तक ठंडे दिमाग से बैठकर सुनने के लिए कुछ सुविधाएं, ये कितनी अच्छी सुविधा है, ऑफकोर्स थोड़ा तकलीफ होता है, पर यह सुविधा नहीं होती तो आप सोचो हर बार टेंशन, कौन सा मंदिर जाए, कहां बुकिंग करें, कहां रखें, वो घंटी बजाता है बोलता है 8 बजे निकलने का, इधर खाने का नहीं, इधर नहीं खा सकते, बाहर जाके खाओ, हमारा केटरर को ही बुलाना पड़ेगा, तुम लोग नहीं बना सकते, इधर खिला नहीं सकते। मैं देख रहा हूं दूसरे मंदिर में जहां जहां छोटे छोटे जहां शुरू हो रही है, यहां से भी अनुभव हुआ है तुमको, तो एक ऐसा सुविधा है ताकि आराम से बैठ के कर सके। शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए सुंदर विग्रह, सवई मन कृष्ण वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु मुकुंद लिंगाले ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अलग अलग प्रकार की सेवाएं, विग्रह हैं तो सेवाएं हैं भगवान के लिए, माला बनाना भगवान के लिए बनाना, प्रसाद बनाना, मंदिर को साफ रखना, ये सब सेवाएं हैं। तो शारीरिक रूप से हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, भगवान की सेवा में लग के आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो एक ऐसा अनुकूल वातावरण जहां हम निश्चिंत होकर बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, विचलित मन या मतलब इधर उधर ध्यान भागने के, ऐसा आराम से बैठ के भक्ति कर सकते हैं, सुन सकते, श्रवणम कीर्तनम, पुस्तक छापना, शारीरिक रूप से ये सब चीजें, उसको आध्यात्मिक मार्ग वाणी है, उस वाणी को देने के लिए जो जो चीज है अच्छे तरह से, ठंडी हो जाता है जमीन ठंडा रहेगा तो ठीक है, चादर लगाओ वो लगाओ, तो बहुत सारी चीजें शारीरिक रूप से। फिर भावनात्मक रूप से, अभी घर में झगड़ा हो गया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, माला टांग दिया मैंने बस, प्रभु जी मैं तो भक्ति में आ गया पर मेरी पत्नी भक्ति में नहीं आई, मेरे बच्चे नहीं आए, काय करूं, वो बोलती तेरे लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आंधा लसन डाल के बनाऊंगी, इसलिए मैंने बोला छोड़ रहा हूं ऐसा, ऐसा मत करो बाबा, धीरे धीरे घुमा फिरा के उसको धीरे धीरे लाओ उनको भी भक्ति में। पत्नी आ गई, पति नहीं आ रहा है, क्या करें, उनको कैसे समझाए, रिश्तेदार लोग ऐसा गौर बोल रहा है, ऐसा ऐसा हो गया हमारा, सब 36 का आंकड़ा हो गया सबके साथ, क्या करें हम, किस तरह से उसको संभाले। कभी कभी उत्साह में हम लोग कुछ ऐसे चीज कर बैठते, बाद में पछताते जीवन भर। तो अनुभवी व्यक्ति आके समझाता है ऐसा मत करो, प्रेम से करो, ताकि हमको ये खरगोश जैसी भक्ति नहीं करनी है, चार दिन दिवाली का रॉकेट जैसा गया कुठे गेलाते, चांगला भक्त होता, कशी कीर्तन करता हो कुठे गेला, ऐसा नहीं चाहिए हमको दिवाली का रॉकेट, हमको चाहिए ध्रुव तारा, हमेशा टिके रहे एक ही जगह स्थित, फिक्स्ड अप डिवोटी, धूप के तो तारा नहीं चाहिए, ध्रुव तारा, आया आसमान में, क्या भक्त है, क्या प्रगति कर रहा है, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा था, ऐसा नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति जो श्रील प्रभुपाद जी के किसी तरह से 84 लाख चोनों में भटक भटक के बाई चांस रंकाला में घूमते घूमते पानीपुरी खाते खाते भटक के सही जगह पे आ गया, सही जगह पे आया गलत एड्रेस समझ के, उसको लगा कुछ और है, बाद में पता चला ये मंदिर है, चलेगा, पर आने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत समझ के प्रामाणिकता से शरण लेना चाहता है तो वो जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उसकी अच्छे तरह से ऐसा देखभाल करे कि वो आजीवन भक्ति को छोड़ के ना जाए, इसका मतलब संरक्षण, और उसके लिए जो भी जरूरत है ऐसी सुविधाओं का निर्माण। कॉलेज के लड़के अभी आ गए, अभी शादी करना है, लड़की कैसे मिलेगी महाराज, वो भक्ति करने वाली लड़की, उसको भक्त बनाते बनाते मेरे बाल पक जाएंगे, लड़की आ गई कॉलेज की, अब लड़का कैसे मिलेंगे उसको, वो एक समस्या है। माता पिता भक्त बन गए, वही मूल्य अपने बच्चों को देना चाहते, बच्चे नहीं सुधरते, आना ही नहीं चाहते, वो उनको कैसे भक्त बनाए, रिश्तेदारों को कैसे भक्त बनाए, बच्चे को एक अनुकूल वातावरण में किस तरह से रखे ताकि वो भी भक्ति में बढ़े, ऐसा नहीं कि बाई चांस हो जाएगा, कुछ तो करना चाहिए। सब प्रकार के अलग अलग जरूरतें होती है, उस सब का देखभाल करना, एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना। क्यों? क्योंकि जब तक अनुकूल वातावरण नहीं रहता घर में, चिंतित रहता है आदमी, और चिंता रहने के कारण आर्थिक समस्याएं आती है कभी कभी, और उस समय हालांकि हर एक व्यक्ति का सारा आर्थिक चीज संस्थान जिम्मेदारी नहीं ले सकती, पर अगर भक्तों का संग होगा तो थोड़ा बहुत एक दूसरे को संभाल के लेके चलते हैं आगे। अगर नहीं होता है तो उस समय बाहर जाना पड़ता है, और तब वो लोग बोलते हैं आता समझ लेना तुला सांगितला होता तुला हरे कृष्ण गेला ना, हो सकता है। तो बहुत सारी जरूरतें हमारी, शारीरिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, हर एक व्यक्ति को थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, हर एक व्यक्ति को थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए। तो ये करना ताकि मानसिक रूप से अगर शांत रहे ना, मन शांत रहे तो आध्यात्मिक प्रगति करना आसान है, प्रेम से सुन सकते हैं, नहीं तो फिर सुनना बड़ा मुश्किल हो जाए। टेंशन हमेशा टेंशन रहेगा, आज वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बहुत बड़ा बोझा पीछे सर पे लेके बैठा हुआ है। और आध्यात्मिक जरूरतें, आध्यात्मिक जरूरत तो मुख्य तो वही है हमारा, श्रवणम कीर्तनम हरिनाम अच्छे तरह से ले, तो ये पूछताछ करना। आए सत्संग और चले गए, कभी कभी हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे जैसे वहां बंबई के मंदिरों में कभी कभी दो या तीन साल से लोग आ रहे हैं, हर रविवार को आते जाते हैं, पर किसी ने कुछ को पूछा नहीं, किसी ने उसको बताया नहीं क्या हुआ। उसने बोला अच्छा ये क्या करते हैं, नहीं जपा, अच्छा आप भी करो, हाँ करूंगा, कितने साल से आ रहे, 3 साल, क्यों नहीं कर, कोई बोला नहीं मेरे को, माला पे करते, अच्छा क्या कौन सा मंत्र, हरे कृष्ण कितना माला, 16, करूंगा ना मैं, 3 साल से आ रहा, किसी को बोला नहीं, किसी को बोलता तो मैं तब से करता, मैं तो उसी लिए आया था सीखने के लिए, किसी ने बोला नहीं। ऐसी परिस्थिति सब देखकर मुझे मालूम है 89-90 में अपने मंदिर में राधानाथ स्वामी महाराज जब देखे, बोले ये क्या हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, नए लोगों को कम से कम खड़ा करके उनको बैठा के उनको बताओ, फिर नए लोग तो छोड़ो पुराने लोगों का क्या। उसके बाद बोले ठीक है, जो लोग उसमें से थोड़े ज्यादा पुराने हैं उनको खड़ा किया और बोले चलो इनको सिखाओ। पर जब सिखाने के लिए बैठे तो पता चला सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सिद्धांत उतना ही, दोनों को उतना ही सिद्धांत मालूम। तो सिखाने वाले बोले महाराज ये तो हमको ही सिखाते हैं, हम क्या करें। तो फिर सिखाने वालों को सिखाने का ट्रेनिंग दिया गया 2 साल, उसका क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। इस तरह से धीरे 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 धीरे, क्योंकि जरूरी है, ये सब छोटी चीज जरूरी है। कभी कभी कुछ संशय होता है, किससे पूछेंगे, इतना बड़ा सत्संग, पूछने से पहले सब लोग प्रसाद अब, और वहां जाने से पहले सब चले गए। कम से कम एक व्यक्ति जिसको मैं जाके पूछ सकता हूं, और पूछने में हिचकिचाट है, क्या किसको किसको मेरा दुनिया का सारा समस्या किसको सुनाऊं, मैं सुनाने की इच्छा नहीं है, अनलेस मुझे विश्वास है कि वो सुनेगा, सही तरह से समझेगा और सलाह देगा, तो हिचकिचाहट होती है। उसीलिए उसको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती आपको पकड़ के सुनाएंगे, आप चाहो या नहीं चाहो, बैठो अभी सुनाता हूं, अभी नहीं बाद में, नहीं अभी सुनो। पर सब लोग ऐसे नहीं होते, वो हिचकिचाते हैं, पूछा नहीं तो कोई बोलते ही नहीं। तो चलो एक ऐसा सिस्टम बनाया, कुछ लोग हैं जो लोग थोड़ा अनुभवी लोग हैं, 2-3 साल से हैं, और ये लोग नए आए, उनको कुछ नहीं मालूम, तुमको इतना तो मालूम ना, पहले इतना तो सिखाओ, जो तुमने सीखा उसको सिखाओ, यही तो परंपरा है। इस तरह से धीरे 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 सिस्टम शुरू हुआ, चाहे उसको काउंसलर सिस्टम बोलो, मेंटर सिस्टम बोलो, सेवक मंडल बोलो, कुछ भी बोलो, पर उसका उद्देश्य यह था कि हर एक व्यक्ति जो आता है संस्था में, उनको प्रवचन में क्या होता है, केवल वन वे ट्रैफिक, प्रवचन ले लिया, हा सांगितले बस, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसका कौन सुलझाएगा, और उसका कुछ संशय है तो कौन सुनेगा। कुछ लोग हिचकिचाते हैं प्रश्न पूछने के लिए, और कुछ वैयक्तिक प्रश्न होता है, कुछ और ही अलग प्रश्न होता है, वो सब सुनाने के लिए फिर धीरे धीरे एक सिस्टम बनाया, और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं बाय प्रोटेक्टिंग देम, उनका संरक्षण करो एंड इंस्ट्रक्टिंग देम नाइसली, उनको अच्छे तरह से मार्गदर्शन दो. कभी कभी सेवा 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 के उत्साह में शरीर को क्या बोलते हैं कि अवहेलना करते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बाद में उसको सुधारते सुधारते जपा बिगड़ जाता है. तो बैलेंस, सब ठीक ठाक चलना. युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म से चेष्टा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. आहार विहार निद्रा सब युक्त, न अति अष्ट, अति कुछ भी करे तो टिकते नहीं ज्यादा दिन. न अति अष्टतस्तु योगोस्ति न अनैकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नहीं वतान. अति भक्ति करना दिवाली रॉकेट जैसा, बाद में बंद ही हो जाना. आता नको माला, ये हरे कृष्णा पढ़ना को हरे रामा पढ़ना को हो जाता है फ्राई आउट, उसको बोलते हैं अपने इस्कॉन भाषा में डीप ब्राउन, फ्राई किया उसको. तो ऐसा हो जाता है अगर मार्गदर्शन नहीं मिले तो. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटी छोटी मिलके बड़ी बन जाती है बाद में. तो उनको मार्गदर्शन देना, दैट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ माई सीनियर डिसाइपल्स. सीनियर मतलब कौन, 4 साल के 3 साल के. प्रभुपाद जी बोलते थे पिछले समय में, पुराने जमाने में, एक गुरु किस तरह से चलाता था क्या बोलते हैं एक पाठशाला. गुरु और गुरु पत्नी दोनों ही होते थे. तो गुरु एक ग्रुप को सिखाता था, पहले साल पहली वाले को सिखाता था, अगले साल पहली वाले दूसरी में आ गए, वो दूसरी को सिखाता था और दूसरी वाले पहली को सिखाते थे. क्या सिखाते थे, जो उन्होंने पिछले साल सीखा उतना ही सिखाना बस, उससे ज्यादा तो ऊपर जाओ. तीसरे साल दूसरी वाले को, तीसरी आ गए, तीसरी को सिखाता था, तीसरी वाले दूसरी को सिखाते थे, दूसरी वाले पहली को सिखाते थे. इस तरह से बहुत बड़े संख्या में लोगों का देखभाल हो जाता था. इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी अधिकृत व्यक्ति चुने गए हैं वो शुद्ध भक्त हैं, ऊपर से उतर के आए आपका उद्धार करने के लिए. नहीं, वो भी आप ही जैसे हैं, पर थोड़ा पहले थे और कोई जो था उसको खड़ा किया है बस. उनमें गलती हो सकती है, उनमें कमियां हो सकती है, पर उनको एक आदेश दिया गया करो ये सेवा, कर रहे बस. अपेक्षा नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हैं. प्रभुपाद जी ने भी जीबीसी के लिए, गुरु के लिए 11 लोगों को खड़ा किया. क्या प्रभुपाद ने गलती की, 11 में से 7-8 लोग अभी नहीं है, कुछ लोग निष्क्रिय हैं और कुछ लोग कर रहे. मौका दिया गया बस, प्रयास करो, जो भी किया अच्छी बात है. तो इस तरह से ये जो सिस्टम बनाया है ये भी एक्चुअली शिक्षा का कंटिन्यूटी है ये. हाँ, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है, पर अगर ये सिस्टम ही नहीं होता तो सोचिए क्या होता. कमियां हैं इस संसार में, कलौ दोष निधे राजन, दोष है. पर चांद में दोष है, उसमें एक छोटा सा एक काला है, इसीलिए मैं चांद को ही बंद कर दूंगा देखने अकल से, नहीं चाहिए, नहीं हो सकता. दोष है पर उसमें से लाभ कितना है, एटलीस्ट एक व्यक्ति के पास आके कुछ मार्गदर्शन ले सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. और क्या सिखाना उसमें, सिद्धांत, साधना और सदाचार. थोड़ा थोड़ा सिद्धांत, हर बार सिद्धांत को सीखना, आधार अच्छा होना चाहिए. बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक आधार है हमारा. उन पुस्तकों को जो शिक्षा गुरु ने दिया है, हमारे वर्तमान प्रदर्शक गुरु ने, अरे संस्थापक आचार्य ने दिया है, खास करके वो पुस्तक अच्छे तरह से उसको पढ़ना चाहिए. पढ़ना नहीं तो समझो, कम से कम अच्छे तरह से चर्चा करनी चाहिए उसको, क्या बोलते हैं, मंथन करके. फिर साधना, कोई पूछने वाला ही नहीं है. दीक्षा 4 साल पहले हुआ, जपा हो रहा है कि नहीं आपका, कुछ समस्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये शायद आप प्रामुख्यता इस पे दे रहे हो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा एडजस्ट करो. नहीं नहीं सुबह नहीं होता, ठीक है शाम को करो, पर करो तो सही. सदाचार, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वरिष्ठों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, सामान्य समान वयस्क समवयस्क लोगों के साथ कैसा व्यवहार होनी चाहिए, हमसे जो उम्र में कम है उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अवैष्णवों के साथ, परिवार के सदस्य जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। जहां हम काम पे जाते हैं वैसे लोगों के साथ, भक्त हैं, तिलक लगाएं, कंठी माला, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो भी एक प्रचार है। विवाह करने के बाद नया सा कर लिए, पता नहीं क्या जिम्मेदारी है, बड़ा जवाबदारी है, नहीं सी औरत है उसको कुछ नहीं मालूम, कल से सोना माला करने, कांधा नहीं लगा, नहीं तो निकलो यहां से, कांधा बंद, लसन बंद, ये बंद, वो बंद, वो बोले शादी भी बंद, निकलो तुम यहां से, अभी आया नहीं तो थोप दिया पूरा सर के ऊपर। कई ऐसा अनुभव हम देखते हैं उत्साह के, मतलब बचपना जैसा उत्साह, उसके कुछ ऐसा चीज हम करते हैं, आजीवन हमको करना है, खरगोश जैसी भक्ति नहीं, कछुए जैसी भक्ति, स्टेडी, स्लो बट स्टेडी, एक बार सामने कदम रखा तो पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, ये इसके लिए मैच्योर गाइडेंस, एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन होना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा आप बोलेंगे ये उनमें मुझे विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति में मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं कैसा आश्रय लूं, पर आप अगर एक वरिष्ठ भक्त के सामने हृदय खोलते हो ना, भले वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको सुझाव दे पाए या नहीं पाए, क्योंकि आपने एक भक्त के सामने अपने आप को नम्र बनाया, अंदर से परमात्मा ज्ञान देते हैं, भले वो भक्त कुछ नहीं कह पाया, सुन लिया, पर क्योंकि आपने अपने आप को नम्र से भक्तों के पास गए आश्रय के लिए, वो नम्रता देखकर, वो प्रामाणिकता देखकर भगवान अंदर से वो ज्ञान देते हैं, वो शक्ति देते हैं, टिके रह तू भक्ति में, भले अभी थोड़ा लग रहा है सब उथल पुथल लग रहा है, तेरा श्रद्धा बिगड़ गया है, टिके रह भक्ति में, करोड़ों करोड़ों जन्मों से तू भीख मांग रहा था तभी मैं तुझे भक्तों के संग में भेजा हूं, इसे मामूली मत ले तू, छोटी सी छोटी छोटी चीजों के लिए हा? मैं सही हूं और ये लोग गलत हैं, आप सही होंगे, एक्चुअली आप सही होंगे पर आप गलत हैं, अगर ये साबित करेंगे मैं सही हूं ये पूरे सब लोग गलत हैं, हो सकता है 100% आप सही हो पर भगवान की आंखों में गलत है, क्यों, कोई बता सकता है क्यों, ऐसे कैसे गलत है वो, और आपने सबूत दिया है कि मैं सही हूं, आप लड़ाई जीत लिए पर युद्ध हार गए, क्योंकि तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरिवसेन अमानिना मार्दन, के एक चीज के लिए हम यहां आए हैं, ये अहंकार को दूर करने के लिए, और ये अहंकार बोल बोल के आता नहीं, मैं अहंकार हूं अभी आ रहा हूं, सूक्ष्म रूप से आएगा, ईर्ष्या के रूप में आएगा, गुस्से के रूप में आएगा, क्रोध के रूप में आएगा, काम के रूप में आएगा, हर बार अलग अलग वेशभूषा डाल के आएगा, मैं तेरा दोस्त हूं आ जा मेरे साथ आ, क्या हरे कृष्ण में जाता है, और उसके वश में हम जाएंगे, तो आप सही होकर भी गलत हो जाओगे, पर अगर उल्टे सीधे कुछ आपने कह भी दिया गलत है, पर अगर आप सही जगह पे आश्रय लिए टिके रहे तो गलत होके भी आप सही हो, भले आप लड़ाई हार जाओ, ठीक है भाई मैं मानता हूं, ठीक है मेरी गलती, ठीक, पर फिर भी नम्रता के कारण युद्ध जीतोगे, माया को पार कर पाओगे, नहीं तो वैष्णवों को गलत साबित किया पर माया की गोद में जाके लेट गए, ये बहुत इतना क्षुरस्य धारा, तेज तलवार जैसा है ये, इसको बड़े अच्छे होशियारी से रखना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन शक्ति है, एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान ना पावर है, शक्ति है, पर जितनी शक्ति होती है उतना ही उसका सबसे ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं और सबसे ज्यादा खतरा भी उसी से हो सकता है, इस शक्ति का अगर दुरुपयोग किया तो, इसको संभालने के लिए हमें एक मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकता है। ये आश्चर्य जरूरी है। और ये सिस्टम जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, फैसिलिटी, ये दो चीज के लिए, आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक शक्ति, दो चीज बस। किसी चीज को संरक्षण देना मतलब दो चीज देना, आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक आश्रय कौन आश्रय दे सकता है? इस दुनिया में सब निराश्रय होने वाले, शरीर निराश्रय हो जाएगा, ये बिल्डिंग धसने वाला है। किस चीज का आश्रय? जो शाश्वत है उसका आश्रय। और क्या शाश्वत है? तीन चीज शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, और भगवान के साथ भक्ति का जो संबंध है प्रेममयी सेवा, ये शाश्वत है। भगवान, भक्त और भक्ति, भक्ति का आश्रय लेना। तो आश्रय, किसी को आश्रय देना मतलब हम किसको आश्रय, हम खुद डूबने मर रहे वाले, दूसरों को क्या आश्रय देंगे? डूबते व्यक्ति किसी को बचाएगा? वो खुद डूब रहा है। आश्रय देना मतलब लोगों को भक्ति में लगाना, एक्चुअली भक्ति में लगाना, नवदा भक्ति में, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, इति पुंसार पिताल विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। और ये जो सुविधा का निर्माण हुआ है यहां लोगों को भक्ति में लगाने के लिए, आप सेवा करो, विग्रह की सेवा करो, भक्तों का संग में यहां आओ, भक्तों के साथ संग करो, पुस्तक वितरण करो, प्रेरणा, थोड़ा प्रेरणा लो और बांटो चार लोगों को, आपका लाभ होगा, उनका लाभ होगा, प्रगति करते रहोगे, टिके रहो इधर। तो ये जो कुछ भी है निर्माण, ये बेसिकली एक आश्रय है या भक्ति में लगने का। आप जो कर रहे हो श्रवणम है, मैं जो कर रहा हूं कीर्तनम है। इस तरह से एक दूसरे को, मत चिता वो मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम तुष्यंति च रमंति च। पर दुर्भाग्यवश ऐसी संस्थाओं में स्वाभाविक रूप से, भौतिक संसार का नियम है ये, अहंकार होने के कारण उसका अलग अलग रूप प्रकट होता है। तो कभी कभी संघर्ष होता है, भक्त में ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों देखा मेरे को, दो दो बार ऐसे बार बार देखा क्यों, तू सुंदर लग रहा है इसीलिए देखा होगा, नहीं ऐसा देखा मानो मुचुकुंदा जैसा, जला के राख करेगा, उसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए मैंने भक्ति नहीं करना। समस्याएं आएंगी, संघर्ष होगा, गलत फहमियां होंगी, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, शारीरिक स्तर पर शीत और उष्ण, मन के स्तर पर सुख और दुख, और अहंकार के स्तर पर मान और अपमान, ये होगा। पर इन चीजों को प्रामुख्यता देकर अगर भक्ति को अगर साइड में रख देंगे, उसको प्रामुख्यता नहीं देंगे, तो फिर लड़ाई जीतेंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो ये मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन लेना। तो आध्यात्मिक आश्रय मतलब भक्ति में लगाना, और आश्रय, आश्रय देना भगवान का आश्रय। वनम गतो यद हरिम आश्रय तत्, प्रहलाद महाराज ने कहा। और दूसरा, आश्रय में आने के लिए शक्ति चाहिए और आश्रय में टिके रहने के लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कहां से आती है? अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से, शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन से, दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन से, ब्रह्म प्रदर्शक या संस्थापक आचार्य के मार्गदर्शन से, उनके पुस्तकों को पढ़ने से, उस पुस्तकों को जो अपनाए हैं ऐसे भक्तों के श्रवण करने से। तो ये बहुत जरूरी है, तब शक्ति मिलेगी। प्रभुपाद, एक भक्त को तकलीफ था, उन्होंने चिट्ठी लिखा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने कहा तुम जो मैं कह रहा हूं उसका पालन करो, मैं माया को मेरे जूते से लात मार के भगा दूंगा, आई विल किक माया विथ माई बूट्स, तू मैं जो बोल रहा हूं उसका पालन कर, फिर देख कैसा माया तेरे को स्पर्श करेगी, मैं देखता हूं। इतने विश्वास के साथ, क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं वो, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ते। पर वो पालन करने की शक्ति नहीं हमारे पास, उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए, ऐसा करो ऐसा मत करो। तो ये हो गया तरीका। क्या ये जो काउंसलर सिस्टम है जो हमने यहां स्थापित किया है, क्या परंपरा में है? कहां लिखा है? प्रभुपाद के पुस्तक में कहीं काउंसलर सिस्टम लिखा ही नहीं है। कोई पूछ सकता है कि परंपरा में है क्या? तो मालती माता जी को 1970 में लिखे हैं, मतलब तीन साल ये 4 साल से थी शायद, ये भी दीक्षा दिए हैं कुछ नए स्त्रियों को, और प्रभुपाद जी माता जी को लिखते हैं, मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपसे वो मार्गदर्शन ले जो आप उनकी वरिष्ठ गुरु बहन हो, तो तुमने जो भी सीखा है, तुम एक पुरानी विद्यार्थी हो, तो तुमने जो भी अनुभव से सीखा है वो अब नए लोगों को सिखाओ, इसको कहते परंपरा, दिस इज कॉल्ड परंपरा। तुमने कुछ तो सीखा है ना गुरु से, तुमने इतने वरिष्ठों से सीखा है ना, 4 लोगों को और सिखाओ, यही परंपरा है। पर कौन किसको सिखाएगा, एक ही व्यक्ति, 50 लोग एक व्यक्ति को सिखाए, दूसरे कोई नहीं सिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक ऑफिशियल सिस्टम बना, एक फैसिलिटी, एक सुविधा बनाई गई है, एक सुविधा है, लेना है तो इसका कोई लाभ ले सकता है, नहीं लेना तो दूसरी बात, पर एक सुविधा है, अगर चाहो तो यह सुविधा उपलब्ध है, इसका आप लाभ ले सकते हो। पर यही प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है, शुद्ध भक्त नहीं हो भले, दोष हो, पर थोड़ा बहुत सीखा है वो सिखा रहे हैं। और यशस्वी जो है भौतिक रूप से यशस्वी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से जब वैष्णवों का, सब वैष्णवों का आशीर्वाद मिलता है तो भले वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए यशस्वी है वो, पर अगर भौतिक रूप से आपका प्रयास यशस्वी है पर आध्यात्मिक रूप से सब भक्तों का विश्वास आशीर्वाद नहीं है तो आध्यात्मिक रूप से वो भगवान के हृदय से, भगवान के दृष्टिकोण से निरर्थक है, वो असफल हो गया वो कार्य। जटायु भले हार गया रावण से, यशस्वी नहीं हुआ वो प्रयास में, पर भगवान की आंखों में यशस्वी था, उसी दिन वो भगवत धाम गया। प्रभु रामचंद्र जो दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, जटायु का किया लक्ष्मण जी के साथ, क्या सौभाग्य क्या अहोभाग्य, उसी दिन भगवत धाम गए वो। ये 1971 का एक श्री गलीम नाम के एक भक्त है, उनको लिखा है, जो भी सिखाता है वो हमारा गुरु है, जो भी हमें कुछ भी सिखाता है शास्त्र के आधार पर वो हमारा गुरु है। इट इज नॉट दैट आफ्टर वी बिकम इनिशिएटेड वी बिकम परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि आज हमारा दीक्षा हो गया, सर्टिफिकेट लग गया, हम परिपूर्ण हो गए, नहीं। जैसे मैंने कहा, दीक्षा मतलब अभी गंभीर से शुरुआत, अभी तक आना तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मूड हुआ तो जपा किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, वो शुरुआत ही नहीं थी। पर जब हमने वचन लिया भगवान के सामने, गुरु के सामने, सबके सामने, इसका मतलब गंभीरता से शुरुआत, अब पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, उसका मतलब। सो इनिशिएशन जो है, इट इज नॉट दैट आफ्टर वी बिकम वी आर परफेक्ट, हम परिपूर्ण नहीं हुए, नो, इट रिक्वायर्स टीचिंग, शिक्षा चलना चाहिए, अभी दीक्षा हो गया, अभी खत्म हो गया, बस हो गया, नहीं, शिक्षा इसके बाद एक्चुअली गंभीरता से शिक्षा स्वीकार करना चाहिए। तब तक मूड में आया तो स्वीकार किया, अभी गंभीरता से स्वीकार करना, और जिस दिन आपने गंभीरता से स्वीकार करना शुरू किया, समझ लीजिए उस दिन आपका संबंध जुड़ गया, और नहीं तो भले दीक्षा हो भी गया हो, अगर गंभीरता नहीं आई तो फिर क्या फायदा, क्या लाभ। नाम का एडमिशन ले लिए पर हम अटेंडेंस कभी गए नहीं क्लास में, ऐसा हो जाता है। सो इफ यू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देम, ऑल सीनियर गॉड ब्रदर्स में बी ट्रीटेड एज गुरु, देर इज नो हार्म। जिससे भी हम मार्गदर्शन लेते हैं वो, उनको हम गुरु के रूप में सम्मान दे सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। सचमुच में हमारे एक ही गुरु हैं जो हमें दीक्षा देते हैं, दीक्षा गुरु, जिस प्रकार हमारे एक ही पिता होते हैं, पिता एक ही होता है, पर जो भी वैष्णव हमें सिखाता है वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मालिक है, वो मेरे से वरिष्ठ है, और इस रूप से अगर मैं किसी से सीखता हूं तो उनको भी हम गुरु मान सकते हैं। इस यहां कह रहे हैं शिक्षा गुरु का महत्व, जो भी हमें मार्गदर्शन दिया है। अब ये भी सही बात है, जो जो भी शिक्षा गुरु का जिम्मेदारी लेता है या जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, फिर भी हम किसी को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो भी प्रभुपाद समझा रहे हैं। सत्स्वरूप महाराज को लिखते हैं 1970 में, आप सही कह रहे हो कि आदर्श उदाहरण और मार्गदर्शन वरिष्ठ सदस्यों का इस समाज में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जो हमारे सारे विद्यार्थियों को जो नए हैं और पुराने हैं उनको कृष्ण भावना में प्रगति करेगा। दो चीज प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई भी अगर शिक्षा गुरु बन रहा है, शिक्षा दे रहे हैं, आप चाहो या नहीं चाहो, इनडायरेक्टली आप अगर किसी को प्रचार कर रहे हैं तो आप उनके शिक्षा गुरु बन रहे हैं, या एक पदवी है आप शिक्षा गुरु या काउंसलर हैं या क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, ये भी एक प्रकार के शिक्षा गुरु, दूसरों को सेवा में लगा रहे। दो चीज जरूरी है, एक हमारा आदर्श उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। यद्यद आचरति श्रेष्ठस, यद्यद वदति नहीं बोला भगवान ने कि कैसा सुंदर प्रवचन देते, वो नहीं बोले, यद्यद आचरति तुम्हारा आचरण कैसा है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज में जो श्रेष्ठ है वो जैसे आचरण करते हैं तत्तदेवे इतरो जनः, वो जो वो पालन करेंगे वो, स यत् प्रमाणम कुरुते, अपने आचार से जो प्रमाण करता है, एक उदाहरण स्थापित करता है, लोकस्तद अनुवर्तते। और दो चीज से बच के रहो बोल रहे, जो शिक्षा गुरु बनते हैं दो चीज से बच के रहो, एक निग्लेक्ट ऑफ फॉलोइंग द रेगुलेटिव एक्टिविटीज, अपने ही जो नियम बताया गया है जपा का साधना का, उसमें अवहेलना करना, खुद का ही अगर साधना में अवहेलना करना, और दूसरा तथाकथित प्रगति ऑन सेल्फ मोटिवेशन, भगवान की प्रसन्नता के बदले अपने क्या बोलते हैं अहंकार को जो अच्छा लगता है। यहां मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी दुर्भाग्यवश मार्गदर्शन ना होने के कारण कभी कभी हम ऐसे एक पदवी शिक्षा गुरु के रूप में भी कभी कभी हम दूसरों को दीक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं, और यह मैंने काफी संस्थाओं में देखा है। और एक प्रकार का अहंकार उसमें भी आ जा सकता है, मैंने 50 लोगों को दीक्षा दिलाया, समझ लो मेरा लेवल क्या है, समझे ना। और वो दिलाने के चक्कर में जो भी आए, तैयार हो या नहीं तैयार हो, आ जा तू, तेरे को दिला दूंगा, और बाद में सरदर्द उनका, वो समस्या को निपटते निपटते पूरा जीवन जाता है। उन शिक्षा गुरु को, शिक्षा गुरु पे विश्वास है तो वो मार्गदर्शन देते हैं। तो कभी कभी अहंकार उसमें भी, सेल्फ मोटिवेशन किस लिए कर रहे हैं, उस गुरु से नहीं मिला, इस गुरु से करा दूंगा तुमको, तुमको दीक्षा दिला दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, खुश। कभी कभी गिने चुने लोगों को हम चुनते हैं, क्यों, क्योंकि अच्छे पदवी पर है यार, बाद में काम आएगा, संस्था को नहीं मुझको भी, उसका उद्देश्य हो सकता है। धनम जनम सुंदरीम जो है बहुत सूक्ष्म है, तो हमको सोचना चाहिए क्या किस लिए हम कर रहे हैं, सचमुच में क्या हम उस व्यक्ति के शुभ चिंतक हैं या अपने खुद के शुभ चिंतक हैं, शुभ मतलब अपने अहंकार के शुभ चिंतक। एक समस्या, मैं एक संस्था का, मैं मतलब एक व्यक्ति का नहीं कह रहा हूं, दुर्भाग्यवश जब ऐसे बोले जाता है तो लोगों को लगता है कि प्रभु जी आप अभी अभी मैनेजमेंट में आ गए, आप जो समझना है समझो, मैं क्या करूं, मैं जो देखा हूं, मैं अनुभव किया हूं, मैं बता रहा हूं, आप प्रार्थना करता हूं कि मेरा उद्देश्य इसमें कुछ और नहीं है, पर ऐसे होने के कारण इतनी गलत फहमी वैष्णव समाज में, इतना तनाव कि यहां के टेंशन से दूर होने के लिए, मंदिर के टेंशन से दूर होने के लिए लोग रंकाड़ा जाके सोते। ये मंदिर में इतना राजनीति चलता है, हो गया समय, अभी प्रवचन हो गया ना, थोड़ा जाके रिलैक्स करते हैं। यहां रिलैक्स करने लोग आना चाहिए, बाहर से दुनिया से तंग आके, ऐसा होने की संभावना है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपना अपना एजेंडा को निभाने के लिए अगर करने लगे, और बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं गुरुओं के प्रति, शिक्षा गुरुओं के प्रति, अरे ये फॉरेन गुरु है, ये इस देश का गुरु है, ये जात तेरे जात का ही गुरु है, ये दूसरे जाति का है, ये भाषा बोलता है, ये भाषा नहीं बोलता है, तेरे को संग नहीं मिलेगा। पर यही गुरु दूसरे देश में जाते हैं जहां दूसरी भाषा बोलते, उन लोगों को आश्रय मिला है, वो कैसे? बहुत ही कनिष्ठ स्तर पर एक गुरु के गुणगान के चक्कर में दूसरों का हम अपराध कर रहे हैं, और एक प्रकार के हृदय पर हिंसा है, दूसरों के श्रद्धा के ऊपर हिंसा, दूसरों के हृदय के भावना से हम खेल रहे हैं। ये बहुत गंभीर चीज है, और इसीलिए आप यशस्वी बनोगे, पूरे समाज में आपको सम्मान मिलेगा, भगवान के भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे हम लोग। भौतिक संसार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा, चेले चपाटी आपको पूजा करेंगे, हार डालेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो इससे हमको उठना चाहिए, जब तक हम गुरु तत्व को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक दुर्भाग्यवश किसी के शुभ चिंतक बनने के चक्कर में अपना खुद की जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, और कभी कभी इन लोगों को मालूम ही नहीं होता है। हम लोगों को, इन लोगों को क्या, मैं भी किया हूं शायद, मालूम नहीं होता है जब तक हम मार्गदर्शन नहीं लेंगे। कौन व्यक्ति दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए योग्य है? जो अपने सबसे अच्छा शिष्य जो है वही सबसे अच्छा गुरु बन सकता है, जो सबसे अच्छा शिष्य है वही सबसे अच्छा गुरु बन सकता है। गुरु बनने से पहले शिष्य बनो, पहले हमें अच्छा शिष्य बनना चाहिए। यानी हमको अपने गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सबका अच्छी तरह से श्रवण करके क्या शरणागत होना चाहिए, नहीं तो आप निश्चित रूप से लड़ाई जीतोगे। आप बुद्धिमान हो और आपके अंदर वो कला है तो घुमा फिरा के आप दीक्षा करवा सकते हैं, आपको नाम मिलेगा, पदवी मिलेगा, सब मिलेगा, श्रेय मिलेगा, पूजा मिलेगा, लाभ मिलेगा, हार मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो इन चीजों में फंसना नहीं हमको, ये बहुत मुश्किल से मिली है भक्ति, इन चीजों में हमको पढ़ना नहीं है। हमें भगवान के सामने कसम खाना चाहिए, न हमें किसी वैष्णव के बारे में बुरा सुनना। गांधी जी के 3 बंदर है ना, वो बंदर को अपने अल्टर में मत रखो, कम से कम अपने टेबल के ऊपर रखो, हर रोज सुबह उठ के देखो उसको। सिर्फ वो बंदरों का, वो भी शिक्षा गुरु है हमारे, अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण बुद्धि से सीखो। मैं बुरा देखना नहीं चाहता, वो जाने, भगवान जाने, मैं बुरा सुनना नहीं चाहता, मैं बुरा कहना नहीं चाहता। हां, अधिकृत व्यक्ति हूं, अगर मैंने देखा अरे अंदर आ गया, मैं करूं क्या इसको, करूं क्या इसको, इस मेरे को सता रहा है, एक अधिकृत व्यक्ति को बोलो, 50 लोगों को बोलते मत फिरो, तो लमाई थे काय केला, मी बघितला हो, मी स्वतः डोळ्याने बघितला। होगा 50 लोगों को बोलने के बाद सबके श्रद्धा में मिश्रण, सबको वैष्णवों के प्रति अपराध भाव, और ऐसे समाज में करोड़ों जन्मों तक जप करते रहेंगे, फिर भी सार ग्राही बनेंगे। कैसा सार? ढूंढ ढूंढ के गलती निकालेंगे, और गलती निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। कलौ दोष निधे राजन, इसका नाक बड़ा लंबा है, इसको मत बोलना बात, इसका बाल ही नहीं है, इसको थोड़ा देख लें। इसको मैंने देखा इस तरह से देखते, वो मत करना, फंसने की संभावना है। तो दुर्भाग्यवश अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है। यशस्वी मिलेगी। एक तो वैष्णव कम है, करोड़ों में एक बनता है, और उसमें जो चार लोगों का समाज है उसमें तू ये चार ग्रुप, इसका उसका, मेरा नहीं जमता उसका, इसका नहीं जमता इसका, उसका नहीं जमता, संकीर्तन कैसे करेंगे? कली का है, कली का तरीका है, कली के प्रभाव में आ जाते। कली मतलब एक चीज, अहंकार। इसीलिए महाप्रभु कहते त्रिणादपि सुनिचेन तरोरी वशिष्ठ अमानी ना मान दे कीर्तनीय सदाहर। तो अंत में मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूं। तो शिक्षा और दीक्षा गुरु में समानता और अंतर क्या है? समानता, दोनों भगवान के प्रतिनिधि हैं, दोनों मदद कर रहे हैं। कोई एक ड्रामा बनाने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्टर का होता है, क्योंकि डायरेक्टर ने पूरा जिम्मेदारी लिया ड्रामा खड़ा करने का। हीरो का भी जिम्मेदारी है, हीरोइन का भी जिम्मेदारी है। वो छोटा सा एक आता है ना, एक किसी को रोल दिया गया है चामा डोलाना, उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। अगर टाइम पे नहीं आएगा तो एक व्यक्ति का रोल है, पीछे से आना थप्पड़ मार के चला जाना बस, और उसके बाद ही सब रोल आता है। वो थप्पड़ मारना नहीं तो ड्रामा ही बंद हो जाएगा। अगर रामायण में मंथरा नहीं आती तो प्रभु रामचंद्र बाहर ही नहीं जाते, और बाहर जाने के बाद दंडकारण्य में शूर्पणखा आई 5 मिनट के लिए, उसने रामायण बना दिया इतना लंबा। दो लोग बीच में आए, कितना महत्वपूर्ण रोल, ऑफकोर्स क्या महत्वपूर्ण, अच्छी रोल नहीं है पर महत्वपूर्ण रोल है। अगर वो टाइम पे नहीं आते, बोले मेरे को इतना छोटा रोल दिया मैं आऊंगी नहीं, तो कई कई अच्छी रहती बेचारी। प्रभु रामचंद्र जाते नहीं, रामायण ही नहीं होता, हनुमान जी नहीं आते, सुग्रीव नहीं आता, विभीषण नहीं आते। इस तरह से हर एक व्यक्ति का पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति हमें मदद कर रही है, बहुत बड़ा ड्रामा है। और ड्रामा का अंत क्या है? हर एक व्यक्ति को भगवत धाम जाना है। जो दीक्षा गुरु हैं वो सबसे बड़े डायरेक्टर तो प्रभुपाद जी, उन्होंने पूरा बता के दे दिया, पूरा स्क्रिप्ट बना के दे दिया, और दीक्षा गुरु पूरी जिम्मेदारी लेते, मैं इसको ड्रामा खा दूंगा पूरा। और उसके बाद शिक्षा गुरु आते हैं बीच में, बोलते हैं लाइट, मैं लाइट चलाऊंगा, मैं तेरा मेकअप करूंगा। मेकअप भी करना बहुत महत्वपूर्ण है ना, लाइट समय पर डालना चाहिए। स्क्रीन के बगल में जो खुजला रहा उस पर लाइट डाल दिया तो बेचारा शर्मा जाएगा, बोले हीरो एक्टिंग कर रहा उधर। सब महत्वपूर्ण है, हम किसी को, हम वर्तन प्रदर्शक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, किसी को हम कम नहीं समझ सकते। पर किस तरह से उनको कृतज्ञता प्रकट करते हैं, किस तरह से सम्मान देते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, वो भेदभाव होता है। पर एक चीज महत्वपूर्ण है यहां। अब एक पेड़ है, चैतन्य महाप्रभु का जो पेड़ है उसमें एक बड़ा शाखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का है, जो संस्थापक आचार्य हैं वो इस चैतन्य महाप्रभु के पेड़ का एक प्रमुख शाखा है। उस शाखा से बहुत सारे दूसरे उपशाखा निकलते हैं, वो उपशाखा हैं बहुत सारे दीक्षा गुरु, उनके बहुत सारे उपशाखा निकलते हैं, वो सब शिक्षा गुरु हैं, उनके बहुत उपशाखा, शिक्षा के शिक्षा के शिक्षा गुरु, मतलब छोटे छोटे कुछ करने वाले, इस सब का योगदान रहता है। पर ये तब तक है जब तक वो डाल से जुड़े हुए हैं, और वो डाल पेड़ से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये शिक्षा गुरु, आदर्श शिक्षा गुरु कैसा बनना चाहिए? आप कहेंगे कि ठीक है मैं शिक्षा गुरु का आश्रय लेना चाहता हूं जो आपने ऑर्गेनाइज किया ये काउंसलर सिस्टम के रूप में, पर उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? एक ओबीडियंस टू द फाउंडर आचार्य, जो क्या बोलते हैं संस्थापक आचार्य, उनके जो ज्ञान है उसके विरुद्ध या उसके अलग कुछ नहीं कहना चाहिए, परफेक्टली उसके अनुरूप होना चाहिए। सपोर्ट ऑफ द दीक्षा गुरु, कभी उस व्यक्ति के गुरु के प्रति उसकी जो निष्ठा है, श्रद्धा है, उसको बढ़ाना चाहिए, कभी उसको घटाना नहीं चाहिए। चाहे उस व्यक्ति का वो गुरु हो, दूसरे का दूसरा गुरु हो, पर हर एक व्यक्ति का अपने जो शिक्षा गुरु हैं उनके प्रति उनका श्रद्धा को थोड़ा भी उसमें कम नहीं आना चाहिए बल्कि बढ़ाते रहना चाहिए, उनकी निष्ठा बढ़नी चाहिए, शरणागति बढ़नी चाहिए। और कोऑपरेशन विद अदर शिक्षा गुरुस, अरे सब लोग ऐसे ही है, इधर आ, तो मैं हूं ना तेरा उद्धारक, सबसे बड़ी तो सबके प्रति अपराध किया आपने एक वाक्य में। ये लोग क्या जानते हैं, ये लोग, ये अहंकार है, एक कली है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता पर महत्वपूर्ण बात है, तथा कथित प्रभुपाद जी के अनुयायी ऋत्विक सिद्धांत जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं प्रभुपाद क्यों, उन्होंने देखा कि बहुत सारे दीक्षा गुरुओं का पहले शुरुआत में इस्कॉन में नए लोग थे तो उनका पतन हो गया या निष्क्रिय हो गए वो, तो उन्होंने क्या किया, अभी एक नया सिद्धांत निकाला कि प्रभुपाद ही हमारे सबके गुरु, डायरेक्टली तुम्हारा दीक्षा प्रभुपाद के नाम, प्रभुपाद ही तुम्हारे गुरु, कोई गुरु नहीं है। यानी एक ही समय में दो लोगों का वो अपराध कर रहे हैं, एक सारे दीक्षा गुरुओं का कि तुम लोग इतने नालायक हो, एक के लिए भी तुम लोगों में योग्यता नहीं है किसी का आश्रय देने की, एक वाक्य में वो कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी की भी वो गुणगान, वो सोचते हैं वो गुणगान कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, कैसे, इनडायरेक्टली प्रभुपाद को बोल रहे हैं आप ऐसे नपुंसक गुरु हैं कि आपने एक भी ऐसा योग्य शिष्य नहीं बनाया जो दूसरों को आश्रय दे सके, परंपरा को जारी रख सके। तो ये अपसिद्धांत है, और वो सोचते हैं कि हम इस्कॉन रिफॉर्मेशन, हम बचा रहे हैं इस्कॉन को, बचा रहे हैं। कैसा कलीले दिमाग उसका फेरा है उनका, कि संस्थापक आचार्य की निंदा और सारे गुरु वर्ग उनकी निंदा एक साथ, और उतना ही नहीं सबका हजारों पुराना कुछ ऐसे निकालकर उसको वेबसाइट में डाल के पुस्तक छाप रहे, वाह, पूरा वैष्णव निंदा का, किसने किसने क्या क्या किया, पूरा कुंडली निकाल के, और जो पुराने जो निष्क्रिय उनका ही नहीं, अभी जितने सारे हैं उनका भी। कहां तक ऐसे में आनंद लेता है आदमी, कहां तक बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, कहां तक अहंकार हमको दे लिया जा सकता है, कहां तक कली हम लोगों को टुकड़े टुकड़े करके जीत सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर हम गंभीरता से शास्त्र को अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि कोऑपरेशन विद अदर शिक्षा गुरुस, आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि आपस में दूसरे जो शिक्षा गुरु दे रहे हैं उसके सम्मति में होनी चाहिए। उसने क्या बोला, अरे वो ऐसे ही बोलता है, मैं जो बोल रहा हूं सही है। क्या बोला वो, ऐसे बोलता है वो हमेशा। श्रद्धा पे हम हिंसा कर रहे हैं, उस हर एक व्यक्ति की श्रद्धा को बिगाड़ रहे हैं, और हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग निंदा करते हुए। तो हालांकि बहुत लाभदायक है ज्ञान, इतना ही अपराध कर सकते हैं। एक सन्यासी एक बार हमें बता रहे थे, बोले कभी कभी मुझे लगता है कि ये लोग, ऐसे लोग इस्कॉन में नहीं आते तो अच्छा था, भक्ति में नहीं आते तो अच्छा था, अभी इतना अपराध कर रहे हैं ये लोग, उसे तो कम से कम बच जाते। कि बहुत गंभीर चीज है, इसको समझना चाहिए। और अंततः चौथा, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ डिसाइपल। कोई भी निर्णय जो हम लोग लेते हैं शिक्षा गुरु के रूप में, काउंसलर के रूप में, डिपार्टमेंट हेड के रूप में, मंदिर के अध्यक्ष के रूप में, मैनेजर के रूप में, सामने वाला जो भक्त है जिसको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी भलाई को सोचना चाहिए, हमको इसमें क्या मिलेगा ये नहीं, हमारे गुरु को कम से कम 10 एक्स्ट्रा लोग मिलेंगे, मैं हमेशा जाके गुरु के सामने 10-10 फल ला के रखूंगा, ये देखो इतना प्रचार का ये फल है 10 आपकी दीक्षा के लिए, ताकि मैं, गुरु मेरे को देखेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, और बाद में उनकी जो समस्या आएगी आप निभाओ प्रभु जी, मैं नहीं। हो सकता है किस तरह से कली हमारे हृदय में प्रवेश करके। और दूसरी बात, ऐसे प्रामाणिक शिक्षा गुरु जिनके पास भले शत प्रतिशत योग्यता नहीं है पर अधिकारियों के कहने पर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, और वो जब अगर कुछ कहते हैं हमें, तो कृपया आप ऐसा मत समझिए कि वो, हो सकता है दुर्भाग्यवश उनके अंदर भी कोई कमी हो, उनका भी उद्देश्य आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, पर कम से कम जितना हो सके ऐसे सोचिए कि कुछ तो इसमें मेरे लिए इसमें भलाई है जिससे मेरे को सीख के आगे बढ़ना है। भले उनका उद्देश्य गलत हो पर अगर आप उसको सही तरह से लेंगे आप प्रगति करोगे, आप प्रगति करोगे। वो अगर उसको पता नहीं सकता है तो उसका तकलीफ होगा दूसरी बात, पर हम अगर उसको सही तरीके से लेंगे, नहीं तो हम भी अगर उस तरह से भावना रखेंगे तो फिर लड़ाई जीतेंगे पर युद्ध हार जाएंगे। शायद कृष्ण में नम्र बनाने के लिए किसी न किसी तरह से वैष्णवों के द्वारा ऐसा करा, ऐसे भावना कम से कम रखिए। भले जो बोला गया है वो शत प्रतिशत गलत हो फिर भी हमारे लिए अच्छा है, इस तरह से भावना रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ भी करते रहे चलेगा, ऐसा भी नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने लिए कैसा सोचना चाहिए। तो ये अगर वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से किसी तरह से जो हम भगवान की भक्ति में आए हैं और श्रील प्रभुपाद जी के सुंदर सुविधा उन्होंने जो दिया है, जिसके लिए उन्होंने प्राण दिया है, जो आश्रय लिए हैं, उसका पूरा लाभ लेंगे और एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनेगा, निश्चित रूप से जो व्यक्ति भी एक बार ऐसे वातावरण में आएगा आश्रय महसूस करेगा और आध्यात्मिक शक्ति महसूस करेगा, आश्रय से दुश्चिंत हो जाएगा और शक्ति से प्रफुल्लित हो जाएगा निश्चित रूप से। और अगर नहीं तो फिर एक ऐसा वातावरण बन जाएगा जो न हमें प्रोत्साहित करेगा न दूसरों को। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं ना प्रभु जी गिव मी योर ब्लेसिंग्स, कृपा कृपा दीजिए, ये सबसे बड़ी कृपा है। उसका आदान प्रदान यही है कि ऐसे वातावरण बनाने में हमको मदद करनी चाहिए जितना हो सके प्रामाणिकता से। एक चीज है प्रामाणिकता, हमारी ओर से प्रामाणिक होनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं पर ये तत्व जो है बहुत ही एक तो एक स्तर पे है और गहराई में जाएंगे तो उसका अलग अलग रूप आ सकता है। तो इन चीजों को इसीलिए ये काउंसिल मीटिंग्स जो हैं इसका वही है, शिक्षा करना। भले दीक्षा हो दीक्षा नहीं हुआ दूसरी बात, पर ये सिस्टम जो बनाया गया है, और दुर्भाग्यवश अभी तक और भी लोग हैं तैयार हैं, अभी तक हमारे लोग तैयार नहीं है। पर अगर हम ऐसे लोगों को ऐसे किसी को भी खड़ा कर दिया तो तकलीफ होगा, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का इरादा है, पर उद्देश्य यही है। पर आप समझिए भले ट्रेनिंग हो या नहीं हो, या अगर कोई सिंसियर भक्त है और अच्छी तरह से आप समझा रहा है अच्छी तरह उसका लाभ ले सकते हैं, और हमने जो सीखा है चार लोगों को हम बांट सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। पर जब भी हम कहते हैं तो दो चीज कि हमेशा वो कृष्ण कथा हो, गुरु का वैष्णवों का भक्ति का कृष्ण का गुणगान हो। पर अगर वो किसी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जनरली डायरेक्टली कोई नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं पर मैंने देखा हुआ, अब क्या करे बोलना पड़ता है क्या है, तो इस तरह से उससे अगर बचेंगे और एटलीस्ट हमारी ओर से प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से प्रगति करेंगे और अनुकूल वातावरण बनाएंगे। हरे कृष्णा। माफी चाहता हूं, मैं सोचा था आधा घंटा प्रश्न उत्तर रखेंगे पर 15 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया, आगे बढ़ गए हम लोग। 5 मिनट कीर्तन करेंगे, जिनको प्रसाद लेना है कृपया, लेट हो रहा है तो प्रसाद के लिए जा सकते हैं। तो 5 मिनट श्री निताय गौरचंद्र की गुणगान में और उसके बाद प्रसाद के लिए जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर ये 2 दिनों में मैंने कुछ भी कहा है जो आपको आपके हृदय में कुछ चोट पहुंचा हो, अनजाने जाने में मैं कुछ कहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। मैं अपनी बुद्धि से जो कुछ भी समझा और अनुभव किया वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग दो दिन रेगुलरली आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री निताय गौरचंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद
की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
श्री नित्याय गौरचंद्र की हरि नाम संकीर्तन की जय।